ओम शांति, ओम शांति और ओम शांति। मीडिया के इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्लेनरी सेशन वन में आप सभी का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। और बहुत सुंदर टॉपिक लेकर के आज आए हैं, विजन एंड मिशन फॉर अ वैल्यू बेस्ड सोसाइटी। समाज में हम वैल्यूज कैसे लेके आए, जैसे सुबह से इसके बारे में चर्चा हो रही है, बूंद बूंद से सागर बनता है और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। जब हम ये जिम्मेदारी लेते हैं स्व परिवर्तन का, तो फिर हमसे दूसरों को प्रेरणा मिलते हुए हम समाज का परिवर्तन सहज कर सकते हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी हर एक अपने कंधों पर जब लेते हैं, खुद मूल्य निष्ठ बनते हैं, खुद सर्व गुणों से संपन्न बनते हैं, तो फिर ऐसे स्वर्णिम दुनिया, स्वर्णिम संसार हम जरूर ले आ सकते हैं। इस कलयुग की दुनिया को हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे बीच बहुत अनुभवी वक्ता उपस्थित होंगे। आपसे मैं अनुरोध करूंगी अपने आप मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर एस अरुल चलवन जी, who is from Chennai, Anna University, please come up on the stage and take your seat. Brother Rajesh Rajori ji, resident editor of Dainik Deshonnati, Buldana. Professor Garima Dutt, assistant professor of Delhi School of Journalism, University of Delhi. Brother Praveen Kharival ji, MPCG Head, Bharat Express, Indore. Adarniya Prabha Didi Ji, Gyan Sarovar ke Director. Dr. B.K. Savita Behen Ji, National Coordinator of Women's Wing. Brother Dilip Jain Ji, Radio Jockey and Actor from Mumbai. Sister Ila Gohel Ji, who is the Deputy Director of National Institute of Mass Communication and Journalism, Ahmedabad. Sister Brahma Kumari Sunita Benji, Zonal Coordinator of Media Wing, Delhi. Dr. Amit Bishwas Ji, who is the Editor of HindiSamay.com from Vardha. Dr. Sujata Singhi Ji, Director of Communications, International Press Representative Council, Mumbai. आप सभी से नम्र अनुरोध है, आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इस सेशन को आरंभ करने से पहले हम सभी मेडिटेशन में बैठेंगे, 2 मिनट परम शांति में बैठ करके परमपिता परमात्मा की दिव्य स्मृति में से हम इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ मंचासीन अपने मेहमानों का स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन बुकेस बैजेस के द्वारा करेंगे। ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध है, अभी इस सेशन के टॉपिक पर प्रकाश डालने के लिए, अपना कीनोट स्पीच देने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर ब्रह्म कुमारी सविता बहन जी को। तो अपने अनुभव के आधार से आज के इस टॉपिक पर प्रकाश डालेंगे। आप 1974 से ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़े हुए हैं और 1989 में आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सबसे पहले 1991 में आप ग्लोबल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के रूप में, चिकित्सा अधिकारी के रूप में आप नियुक्त हुए। वैसे आप मेडिकल MBBS पढ़े हुए हैं और फिर उसके बाद 2000 से लेकर के 2007 तक दादी प्रकाश मणि जी के पर्सनल फिजिशियन के रूप में अपने सेवाएं दी। अभी वर्तमान समय आप वुमेन्स विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं और संस्था में विभिन्न जगह पर जाकर के अपने वक्तव्य से हजारों लाखों लोगों को लाभान्वित किए हुए हैं, न केवल देश में लेकिन विदेश में भी। कई देशों में जाकर के अपने अनुभवों के आधार से अनेकों को लाभ दिया है। आदरणीय डॉक्टर सविता बहन जी से अभी अनुरोध करते हैं आज के इस टॉपिक पर प्रकाश डालेंगे। आदरणीय सविता बहन जी।
ओम शांति। आप सभी भी एक बार फिर से बोलेंगे ओम शांति। विश्व कल्याणकारी जगत नियंता परमपिता परमात्मा शिव की प्रिय संतान मंचासीन परम आदरणीय प्रभा बहन जी, आज के कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर डॉक्टर एस अरुल शेलवन जी, भ्राता राजेश राजौर जी, प्रोफेसर गरिमा दत्त जी, ब्रदर प्रवीण खारीवाल जी, भ्राता दिलीप जैन जी, बहन ईला गोयल जी, डॉक्टर अमित विश्वास जी, बहन डॉक्टर सुजाता सिंघी जी, बहन सुनीता जी और सुमन बहन, और आप सभी भारत के विभिन्न प्रांतों से पधारे हुए मीडिया से संबंधित भाई और बहनें, जो आज का विषय है मूल्यनिष्ठ समाज के लिए दृष्टि और उद्देश्य। तो आज हम कैसा समाज चाहते हैं? हम सभी चाहते हैं कि ऐसा समाज हो जहां संपूर्ण सुख शांति हो, समृद्धि हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, व्यवस्था हो। लेकिन वर्तमान समय हम देखते हैं कि समाज में अनेक नकारात्मक वृत्तियां इस समाज की व्यवस्था को असुरक्षित बनाए हुए हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता है जब क्रोध के कारण कोई हिंसा और हत्या का समाचार ना हो, या काम विकार के कारण कोई दुष्कर्म की घटना ना हुई हो, या लोभ के कारण कोई भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी ना हो। आज धन के पीछे तो हम कहेंगे कि ये सोच है कि धन ही सब कुछ है। जो भी हमारी भागदौड़ की जिंदगी है वो इसलिए है कि कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा कमा लें। पहले कहते थे धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया और चरित्र गया तो सब कुछ गया, लेकिन अब उल्टा है। अब है कि धन गया तो सब कुछ गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया और चरित्र गया तो कुछ नहीं गया। यानी धन कमाने के लिए अपने चरित्र की भी परवाह नहीं करते, अपने मूल्यों की भी परवाह नहीं करते और अपने संबंधों की भी परवाह नहीं करते। आज धन के कारण भाई भाई में द्वेष हो जाता है, यहाँ तक कि भाई भाई के दुश्मन बन जाते हैं, यहाँ तक कि बेटे और बाप के संबंधों में भी कड़वाहट आ जाती है। तो धन हमारे जीवन की आवश्यकता है जरूर, लेकिन धन सब कुछ तो नहीं है। धन हमें कमाना चाहिए, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही जीवन में सुख शांति लाता है। और अगर गलत तरीकों से वो धन आता है तो वो धन जीवन में तनाव ही पैदा करता है। ऐसे ही भाई भतीजावाद के कारण किसी के साथ अन्याय ना हुआ हो, या अहम के कारण किसी को प्रताड़ित ना किया गया हो, तो ये सब आज आम घटनाएं हैं जो समाज में घटती रहती हैं। जैसे अभी सुमन बहन ने कहा कि व्यक्ति समाज की इकाई है, तो अगर हम समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो पहले व्यक्ति में परिवर्तन लाना होगा, यानी स्वयं में परिवर्तन लाना होगा। तो हमें अपने आप को देखने की जरूरत है कि क्या हम भी इन्हीं नकारात्मक वृत्तियों का हिस्सा तो नहीं हैं, और अगर हैं तो हम स्वयं को परिवर्तन करें। लेकिन ये परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं जब पूरा तंत्र ही दूषित है और उसमें मुझ एक ने परिवर्तन कर लिया तो क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन फर्क पड़ता है, क्योंकि समाज में जो भी बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई वो किसी एक ने शुरू की। भारत की आजादी का संकल्प महात्मा गांधी को तब आया जब अंग्रेजों ने उनका अपमान किया दक्षिण अफ्रीका में, उन्हें ट्रेन के डिब्बे से फर्स्ट क्लास से बाहर धक्का दे दिया गया, और तभी उन्होंने सोचा कि मुझे भारत को आजाद कराना है। और उसके बाद जो उन्होंने हिम्मत रखी और दृढ़ता रखी, पूरा भारत धीरे धीरे उनके साथ जुड़ा। लेकिन उन्होंने अपने मूल्यों को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, सत्य अहिंसा और मूल्यों के आधार पर उन्होंने भारत को आजादी दिलाई और राम राज्य की कल्पना की कि भारत में राम राज्य को लेकर के आना है। ऐसे ही इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना निराकार परमपिता परमात्मा शिव के द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा को माध्यम बनाकर की गई, और उस समय वो अकेले थे, लेकिन उन्होंने वो हिम्मत रखी, दृढ़ता रखी, और जो एक श्रेष्ठ समाज के लिए मूल्यों की आवश्यकता है उन मूल्यों के आधार पर उन्होंने इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। और आज ये कार्य इतना विस्तृत रूप ले चुका है कि 140 देशों में लगभग 8000 सेवा केंद्र हैं। तो ऐसा नहीं है कि अकेला व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन भले ही आज कंपटीशन का जमाना है, कट थ्रोट कंपटीशन है, कंपैरिजन है, और हम भी उस रेस का हिस्सा हैं, लेकिन हम ये सोचें कि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, और वो लक्ष्य नकारात्मक ना हो, और अपने उस लक्ष्य के प्रति हम ईमानदार रहें, तो हम निश्चित रूप से वो हासिल कर लेंगे जो हम समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। अध्यात्म की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। आज वैसे भौतिकवाद अपने चरम पर है और अध्यात्म की हम अवहेलना करते हैं, लेकिन अगर मूल्यों की पुनः स्थापना करनी है तो हमें अध्यात्म का भी समावेश अपने जीवन में और समाज में करना होगा, जिसकी नींव परमात्मा शिव ने डाली, पिता श्री जी ने डाली एक नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना के लिए। और जब हम अध्यात्म का पालन करते हैं तो हम आत्मचिंतन करते हैं, आत्म मंथन करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, और हमारा आत्मबल बढ़ता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारी कमियां कहाँ हैं और कहाँ हमें परिवर्तन लाना है, और फिर ईश्वर से हम जुड़ते हैं जो सर्वशक्तिवान है, जिनसे हमें शक्ति मिलती है कि हम वो परिवर्तन स्वयं में ला सकें, उस परिवर्तन को हम स्थायी बना सकें, या जो भी चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं उनका हम सामना बेहतर तरीके से कर सकें। क्योंकि जब भी हम मूल्यों का मार्ग अपनाते हैं तो चुनौतियां हमारे सामने डबल हो जाती हैं। आज अगर हम सच्चाई ईमानदारी की बात करते हैं तो समझते हैं कि आज के समाज में इन मूल्यों का कोई महत्व नहीं है। ये वो समय है कि जिन मूल्यों से मनुष्य को महान माना जाता था उन्हीं मूल्यों से आज मनुष्य को मूर्ख समझ लिया जाता है। तो इसीलिए उस मार्ग पर डटे रहने के लिए जो सामर्थ्य, जो मनोबल हमें चाहिए वो परमात्मा से योग लगाने से हमें प्राप्त होता है। आज हम सब जो मीडिया से जुड़े हैं, मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो एक सशक्त संदेश देने का माध्यम है, तो मीडिया के द्वारा हम लोगों को वो संदेश दें, वो विचार दें जो मानव मन की कमजोरियों को दूर करने में सहयोग दें, न कि मानव मन की कमजोरियों को बढ़ाएं, उसे सशक्त बनाएं और उनके व्यक्तित्व का विकास करें, उनका निर्माण करें। तो हम उस माध्यम को समाज के पुनर्निर्माण में प्रयोग कर सकते हैं, पर यह निर्भर करेगा कि पहले हम स्वयं में परिवर्तन लाएं, स्वयं के जीवन को मूल्यनिष्ठ बनाएं, तभी हम उसे समाज तक ले जा सकेंगे और अपनी आवाज को उतना सशक्त रूप से कह सकेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सविता बहन जी का। सार रूप में बहुत गहरी बातें आपने कह दिया। वैसे मूल्यनिष्ठ समाज को बनाने के लिए चार स्तंभ की जरूरत है, तन मन धन और जन। अगर चारों ही अगर स्वस्थ है, तन तंदुरुस्त है, मन शक्तिशाली है और धन एक ऑनेस्टी से हम उसको कमा रहे हैं और जन का सुख संबंधों का सुख है, तो चारों प्रकार के सुख जब हमारे जीवन में है तो समाज को भी हम सुखी बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम एक स्तंभ पर ज्यादा हम अटेंशन दे रहे हैं, धन कमाने में ज्यादा हमारे समय और शक्ति लगा रहे हैं, लेकिन तीन और जो स्तंभ है उसको हम कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर रहे हैं। जैसे एक टेबल को चार स्तंभ की जरूरत होता है और एक स्तंभ भी, एक पैर भी थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो वो डगमगा जाता है, ऐसे ही हमारे जिंदगी का भी के भी ये चार स्तंभ है। अपने आप को देखने की जरूरत है कि चारों स्तंभों में से कौन से स्तंभ स्ट्रांग है, कौन से स्तंभ वीक है। अगर कोई भी एक स्तंभ भी वीक है तो हमारी जिंदगी भी एक स्टेबल नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं संपूर्ण रीति से वो सुखमय जो होना चाहिए जिंदगी ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए जब हम आध्यात्मिकता को एक फाउंडेशन बनाते हैं तो चारों को ही हम इक्वली अटेंशन देते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे एक इमारत को बहुत ऊंचा ले जाना है तो उसका फाउंडेशन भी बहुत ही गहरा होना जरूरी है। फाउंडेशन अगर गहरा नहीं है तो वो इमारत 100 मंजिल तक या फिर वहां तक नहीं ले जा सकते। ऐसे अपने जिंदगी के भी जो फाउंडेशन है वो है मूल्य। भले हम फास्ट सब कुछ हासिल करना चाहते हैं लेकिन कोई भी समस्या आई तो उसको झेलने की, उसको सामना करने की, उसको सहन करने की ताकत हमारे अंदर ना होने के कारण से तुरंत सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक दूसरे को मर्डर करने तक हम चले जाते हैं। तो वो इमोशनल स्टेबिलिटी हमारे अंदर नहीं होता। तो इसीलिए बार बार यहाँ एम्फसाइज किया जा रहा है आध्यात्मिकता के प्रति हमारी अगर झुकाव है उस तरफ हम अपनी जिंदगी को ले जाएंगे तो जरूर हम इस समाज को बेहतर बनाने के लिए सुंदर योगदान प्रदान कर सकते हैं। मैं अभी अगले वक्ता को आमंत्रित करने जा रही हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर एस अरुल चेलवन जी, हु इज द एसोसिएट प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया साइंसेस एंड ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशनल Multimedia Research Center, Anna University, Chennai. In addition to his doctorate in media sciences from Anna University, he has received 4 international fellowships. In addition to teaching at the Department of Media Sciences, he is also the curriculum development coordinator and has developed and written course material for various subjects. He has successfully guided 14 PhD scholars in earning their doctoral degrees. His services towards teaching were recognized when he was awarded the best young educationalist by Education Today, a Tamil educational monthly, in 2008 and by Public Relations Society of India in 2023. With the support of UNICEF, ICSSR, Government of India, Department of Rural Development, Government of Tamil Nadu and other agencies, he completed more than 10 major and minor research projects in the area of communication, media development and journalism. Most respected Dr. Arul Chelvanji.
Very good afternoon to all, respected sisters and brothers, dignitaries. Very good evening. The media wing of Brahma Kumaris, they are doing media conferences regularly. They are inviting many media experts around the country. They are doing a lot of media researchers. It is one of the significant impact on the media sector, because the most of media what we are watching, listening and reading, mostly they are giving the negative side of the society, negative side of the nation, negative side of the human being. But we have to present the positive thing. Positive things only can raise the peace and harmony in the society as well as in the nation. But actually what is going on? Very long back, you know, the past president of India, Dr. APJ Abdul Kalam, before he became the president of India, he was the honorary professor in our own Anna University in around 2000. He is regularly visiting our university. He is sitting and discussing with the PhD scholars, media persons, everyone. That time he mentioned one incident. During he was working with the DRDO, he visited Israel for a research purpose. He stayed in a Star Hotel. At that time, there was a bomb explosion happened. Immediately, as a human being, he wanted to see what happened. But nobody is allowed to enter into the site because it is closed for checking. So he was thinking that, okay, anyway, tomorrow morning the explosion thing, bomb blast will come in the media, newspapers. We will read and watch. We can know what happened yesterday. But tomorrow morning, he searched all the newspapers, the particular bomb blast is not published. Finally, he found the news item in some unidentified page in a small one column news for just sake of recording purpose. Then he inquired with some principal scientists in the Israeli government. They said, our media, they are not publishing all these negative things because we are always focusing on the development, social development and nation development. If you are giving importance to these kind of news, the people think that this is important. Their mind is always focusing on that. Yes, whenever we are receiving some negative news, you can see automatically it repeatedly happening in the society. When there is a crime is happening, There is a repetition, continuous repetition. We can see regular same kind of crime in happen across the different parts of the country, across the country. Why? Because the media is giving more, it is fascinating the crime, the particular crime. They are giving more importance, they are giving in the first page, they are giving a lot of photographs. Automatically, they are willing to do the crime, they are taking as a role model. You know, many serial killers, rapers, everyone, they are saying that, yes, we saw that film, we did based on that particular news, like that they are saying. So we have to avoid. But how we can avoid? These kind of conferences, workshops can change the mindset of the journalists and media experts across the country. During the last 2022, I was selected as a peace fellow. I did my peace research at Chulalongkorn University, Thailand. Across the world, 33 peace fellows, peace researchers gathered there. the research went on well around 1.5 months. After that, we came to a conclusion why there are conflicts are happening throughout the world. Only three factors. One is the water. Water crisis is more. Water conflict is happening within the neighbors, within the neighboring states, within the neighboring country. Okay? The natural resources is coming down. The water is one of the precious thing, but we are not giving importance. So water, environmental things, natural resources, this kind of resources are making conflicts. So we have to focus on all these things. We mean media. Media should focus what are the things we should present. What are things should be solved in a positive way. Instead of publishing all these crimes and assaults, we have to focus all these crisis issues, how we can face, how we can overcome, how we can solve. Automatically the society will change. For that, the media should present in a, they have to think about positive presentation, positive thing. We have to work on the responsible way. The responsibility is not only for the citizen, it is for media, it's for everyone. So we are, normally we are thinking that it's for the rulers, not only rulers, it's for rulers, for media people, the citizen, everyone in the country, everyone in the society. I hope this media conference can play as a game changer in the media industry. It will bring a positive change, positive news reporting in the country. Thank you so much. Thank you for the opportunity.
Thank you very much, Dr. Arul Chelvanji. You have kept a very challenging thing in front of us. वैसे तो कहते हैं पॉजिटिव न्यूज इज नो न्यूज है ना. जब नेगेटिव न्यूज होता है तो बहुत लोग इंटरेस्ट से फिर बहुत ध्यान देकर के उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं. तो इसलिए नेगेटिव न्यूज को ही ज्यादा हम देते जाते हैं क्योंकि सब्सक्राइबर्स ज्यादा चाहिए, व्यूवर्स ज्यादा चाहिए. लेकिन हम फिर ये महसूस नहीं कर रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट समाज पर क्या हो रहा है. और हम, हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मीडिया पर्सन, हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज को एक अच्छा सशक्त बनाने की, उसका दायित्व हम किस रीति से निभा रहे हैं, अपने आप को चेक करने की जरूरत है. अपने आप को ये चैलेंज जरूर दे कि क्या हम पॉजिटिव न्यूज को हाईलाइट कर सकते हैं. क्योंकि कई बार ये देखा गया है नेगेटिव न्यूज को फ्रंट पेज में दिया जाता है. पॉजिटिव, बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव इंसिडेंट्स हो रहे हैं समाज में, लेकिन कहीं तीसरे, चौथे या पांचवे पेज में थोड़ा बहुत छपता है, या फिर टीवी पर भी तो एक मिनट के लिए या एक सेकंड के लिए उसको हाईलाइट किया जाता है, लेकिन नेगेटिव न्यूज को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है. तो इसीलिए नेगेटिव एनर्जी को और हम बढ़ा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियली हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. लेकिन अगर हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं तो जरूर हम समाज को एक पॉजिटिव दिशा देने में सक्षम जरूर होंगे. अभी मैं अनुरोध कर रही हूं आदरणीय भ्राता राजेश रजौरी जी, हु इज द रेसिडेंट एडिटर ऑफ दैनिक देशोन्नति फ्रॉम बुल्दाना. Most respected brother Rajesh Rajouri ji.
National Media Conference and Retreat mein plenary session first. Mulyanishtha samaj ke liye drushti aur uddesh. Bahut hi sundar topic aaj yahan diya gaya hai. Lagbhag 2007 se main yahan aa raha hu. Har waqt naye naye topic, nayi nayi baat. और ब्रह्मा कुमारीज मीडिया विंग का ये जो प्रयास पिछले 30 सालों से हो रहा है, सबसे पहले मैं मीडिया विंग का, ब्रह्मा कुमारीज का अभिनंदन करना चाहूंगा. आप सभी से अनुरोध करूंगा कि एक बार तालियां बजाकर हम उनका अभिनंदन करें. मीडिया विंग के अध्यक्ष करुणा भाई जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर शंतनु भाई जी, ये सब लोग जो प्रयास कर रहे हैं और वो इस बात को मानते हैं कि यहां जो लोग आ रहे हैं, वैसे तो बहुत कम लोग यहां पहुंच पाते हैं, जो पहुंचते हैं वो सब भाग्यशाली हैं और हम भी उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग जो यहाँ आ रहे हैं तो हम कुछ समाज में अलग करने की चाह रखते हैं। बस इसी से थोड़ा आपके लिए शुरू करूंगा कि हम इस तरीके से यहाँ एकत्रित हुए हैं कि शाम ढलने के लिए रोज सुबह सस्ते हैं। कवि गोपालदास जी नीरज की लाइनें हैं कि शाम ढलने के लिए रोज सुबह सस्ते हैं, हम वक्त की मेज पर दर्द के गुलदस्ते हैं, और सब लिखते हैं अखबार में छपने के लिए, हम जमाने को बदलने के लिए लिखते हैं, हम जमाने को बदलने के लिए लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ जो आए हैं, हम निश्चित रूप से यहाँ से जो भी कुछ संकल्प लेके जाएंगे वो जमाने को बदलने के लिए काम आएगा, ऐसा विश्वास मैं व्यक्त करता हूँ। और मेरे विषय पे आता हूँ, सामाजिक मूल्य की बात हम कर रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था के लिए मूल्यों की बात कर रहे हैं। तो मूल्य क्या है, पहले हम थोड़ा सा उसको एक जिसको कहते हैं मराठी वर्तमान पत्र का संपादक हूं तो हो सकता है कुछ मराठी शब्द आ जाए, आप मुझे माफ कर दीजिएगा, पूरी हिंदी शुद्ध नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन सामाजिक मूल्य की हम बात करते हैं तो समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, सत्य, अहिंसा, विश्व बंधुता, साथ ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और स्वतंत्रता से ये सब सामाजिक मूल्य हम इसको मान के चलते हैं। अब लोगों में ये मूल्य जो आते हैं तो लोगों में जो विश्वास होता है और दृष्टिकोण होता है, समय के साथ जो परिवर्तन आता है या परिवार, दोस्तों, समाज और जीवन के अनुभव से, उनके प्रभाव से भी कुछ मूल्य बनते रहते हैं। जैसे दीदी जी ने यहाँ कहा कि ये मूल्य अब मानते ही नहीं है, ऐसा कहना ही मतलब गलत हो जाएगा, अभी कोई ईमानदारी से मतलब चलना नहीं चाहता है या उसको दिक्कत आती है, तो ये समय का परिवर्तन का अभाव, समय के इसमें अभाव में मूल्य आ गए हैं लोगों में। जैसे हम बोल रहे थे कि सामाजिक मूल्य के एक्चुअली जो मानक है जिनके द्वारा हम किसी वस्तु, व्यवहार, लक्ष्य, साधन आदि को अच्छा या बुरा कहते हैं, भला या बुरा कहते हैं, उचित या अनुचित कहते हैं, वंचित या अवांछित कहते हैं, ये हम सामाजिक मूल्यों के द्वारा करते हैं। मूल्य वे आदर्श हैं जो सामाजिक जीवन में, आचरण में अभिव्यक्त होते हैं, और वे नैतिक मान्यताएं हैं जो बहुमत द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। अभी सामाजिक मूल्यों में नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, भौतिक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य, ऐसे कई मूल्य भी होते हैं। नैतिक मूल्य में हम देखते हैं तो न्याय, ईमानदारी और सत्य की बात जो नैतिक मूल्य में आ जाएगी। आध्यात्मिक मूल्य में शांति, प्रेम, अहिंसा ये आ जाएगा। भौतिक मूल्य में हम भोजन, मकान, वस्त्र, इन बातों को डाल सकते हैं। सौंदर्यात्मक मूल्य में हम प्रकृति, कला, मानवीय जीवन का सौंदर्य, ये सब हम सौंदर्यात्मक, ऐसे भी सांस्कृतिक मूल्य है, जीवन मूल्य है, ऐसे बहुत सारी बातें हम आदि मूल्य में आ जाती है। दो वाक्यों में अगर कहना चाहे तो फर्स्ट, हम वास्तव में जिसे सम्मान देते हैं, चाहते हैं सम्मान देना चाहते हैं, सम्मान देते हैं, या जो महत्वपूर्ण समझते हैं वही मूल्य है। दूसरी बात, जीवन को सुखमय और श्रेष्ठ बनाने हेतु जो शाश्वत, मतलब मराठी शब्द था चिरंतन, जो शाश्वत है उसको मूल्य कहते हैं। ऐसे हम मूल्य से शुरुआत करते हैं, और सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य सामूहिक होते हैं तथा इन्हीं मूल्यों के आधार पर हम किसी समाज की प्रगति, अवनीति, उन्नति अथवा परिवर्तन की दिशा ये निर्धारित करते हैं। मूल्य हमें दिशा उद्देश्य के साथ जीने में मदद करते हैं। अब ये कितने लोग मानते हैं इस बात को, ये बात अलग है, लेकिन जीने में मूल्य मदद करते हैं, और हमारे मूल्य हमें आगे का रास्ता दिखाते हैं और बेहतर विकल्प चुनने के लिए भी वो हमारे मतलब मदद करते हैं। मूल्य हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। अब ये मूल्यों की बात हम करने के बाद में जब मीडियाकर्मी मूल्य आधारित समाज हेतु दृष्टि और लक्ष्य की बात करें तो यह सभी फिर समाज में मूल्यों की कमी आई है, सब लोग मानते हैं। हम यहाँ बैठे हुए सारे लोग मानते हैं, मंच पे बैठे हुए लोग मानते हैं कि समाज में मूल्य बहुत थे, अब मूल्य कम हो गए हैं, उनकी कमी आई है, मूल्यों के साथ कोई चलना नहीं चाहता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो अभी इसको देखिए, और मूल्य हमको लाना है तो हम कहाँ से लाएंगे? तो शिक्षा के माध्यम से जब मूल्य देने की बात हुई कि समाज में अगर मूल्य कम हो रहे हैं तो हम शिक्षा से देंगे, तो कोठारी कमीशन ने यह बात की थी 1965 के आसपास कि शिक्षा से मूल्य दिए जाने चाहिए। पहले देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी क्योंकि घर में से मूल्य दिए जाते थे, अब शिक्षा से देने की बात आई। फिर बाद में हम आज भी जीवन मूल्य को नहीं दे पा रहे हैं, और इसीलिए आज देश में हर साल 35,000 स्टूडेंट, 35,000 विद्यार्थी आत्महत्याएं कर रहे हैं, हम उनको मूल्य नहीं दे पा रहे, यही उसका रीजन है। यहाँ जीवन मूल्य यानी सही जीवन जीने का तरीका मूल्यों के आधार पर हम उनको बता नहीं पा रहे हैं। भौतिक साधनों से ही सही जीवन नहीं है, और जहां पर हम वृद्धाश्रम का बढ़ना कहते हैं, फूलना कहते हैं, तो वहां जीवन मूल्यों का ह्रास होता है, ये बात भी हमको समझ लेनी चाहिए। आज देहाती और शहरी जीवन को देखो तो आज भी देहाती जीवन में मूल्य नजर आते हैं, लेकिन मीडिया जो है वो चकाचौंध वाली शहरी जीवन ही दिखाता है, आप देख लीजिए। और सिनेमा सीरियल में मीडिया में हमारे गांव गायब हो चुके हैं, जो दिखाना है वो सिर्फ शहरी दिखा देते हैं। और देश की 60% जनता जब देहात में रहती है तो वहां मूल्य अभी भी जिंदा है, और वे मूल्य साहित्य में है मात्र मीडिया से गायब है। अब पत्रकारिता को सत्यता, सटीकता और तथ्य आधारित समाचार, स्वतंत्रता, निष्पक्षता के सिद्धांतों के साथ मूल्यों को लाने का काम करना होगा। और ये ला सकते हैं हम, क्योंकि मूल्य देहात से उठाकर हमको लाना है। दादा दादी का प्यार आज भी देहात में मिल जाता है, और शहरों में तो फिर वही आज की युवा पीढ़ी खोज रही है, लेकिन उनको वो प्यार नहीं मिल पाता है। आज हम कहते हैं कि मराठी में जिसको हम कहते हैं कि एकत्र कुटुंब व्यवस्था संपली, ऐसा ज्यादा मानता कि हम लोग अब अकेला कुटुंब जैसी परिस्थिति में आ चुके हैं, तो वहां मूल्यों का रास होना शुरू हो गया है, एकल परिवार में आ चुके हैं, और हम पालना घर से मूल्यों को शिक्षा नहीं ला सकते। ये हमको भी समाज को, सोसाइटी को, मीडिया को समझाना होगा, हमें यह सब समझाना होगा, और मीडिया को यह बार बार बताना होगा। एक बात आप हरदम मीडिया वाले इस बात को सोचे कि अगर किसी को गलत चीज या कुछ करना है तो उसको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, वो आपो आप गलत लाइन पर लग जाएगा। लेकिन किसी को अगर अच्छा ही करना है, अच्छा ही बताना है, तो अच्छाई के लिए बार बार हैमरिंग हम लोगों को करनी पड़ती है, और यही हैमरिंग अगर मीडिया करे तो निश्चित रूप से मूल्य वापस आ सकते हैं। आज यहाँ सेमिनार में यह सेमिनार हमको इसी बात की प्रेरणा देता है कि हम मीडिया वाले इस बात को लेकर चले कि हम मूल्यों की पुनर्स्थापना करें, तो समाज जो हम बोल रहे हैं, नई समाज व्यवस्था बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं कि मूल्यनिष्ठ समाज के लिए दृष्टि चाहिए, तो वो मीडिया दे सकता है, लेकिन शुरुआत हमें करनी होगी। हम आज यहां से यह प्रेरणा लेके जाते हैं तो उस वक्त मुझे दो लाइनें याद आती है, मंजिलें मिलती है रास्ता भटक कर ही सही, मंजिलें मिलती है रास्ता भटक कर ही सही, गुमशुदा तो वो कहलाते हैं जो घर से निकले ही नहीं, गुमशुदा तो वो कहलाते हैं जो घर से ही निकले नहीं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता राजेश जी का, बहुत सुहा। पहले कहते थे कि मूल्य हमें परिवार से सिखाने की जरूरत है, लेकिन बाद में ये समय आया कि एजुकेशन के द्वारा, शिक्षा के द्वारा मूल्यों को सिखाने की जरूरत है। लेकिन अभी वो समय है कि मीडिया के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा हमें मूल्य शिक्षा देने की जरूरत है, क्योंकि हर एक के हाथ में, मेजॉरिटी के हाथ में मोबाइल होता है, और हर कोई ये सोशल मीडिया पे कोई ना कोई प्लेटफॉर्म में जरूर वो ब्राउजिंग कर रहे होते हैं। तो इसीलिए अगर उस प्लेटफॉर्म पे अगर हम मूल्यों के जो मैटर्स है तो वो ज्यादा देते जाएंगे, तो जरूर हम कहीं ना कहीं उन तक पहुंचा सकते हैं। चलिए 10 लोगों में से अगर एक व्यक्ति का भी परिवर्तन हो जाता है तो वो बहुत हमें वो लाभ मिल सकता है। प्रोफेसर गरिमा दत्त जी जो असिस्टेंट प्रोफेसर है दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, गरिमा दत्त जी इज अ मीडिया एंड कंटेंट कंसल्टेंट एकेडमिशियन एंड बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली। इन अ करियर स्पैनिंग के शी हैज वर्कड विद द टाइम्स ग्रुप, NDTV, जी मीडिया, बिजनेस स्टैंडर्ड, नेटवर्क 18 एंड मेनी अदर ग्रुप्स एज वेल। She is a theatre practitioner and a co-member of Panavist Feminist Theatre Group and has facilitated workshop theatre on issues of violence, gender and sexuality working with marginal communities. Most respected Garima Dajji.
I'll just keep it here. Thank you. Respected dignitaries, guest of honors present, my fellow panelists on the dais, Professor Dr. S. Arun Chelvanji, Brother Rajesh Rajoreji, Brother Praveen Kharivalji, Dr. B. K. Savita, Professor Brother Dilip Jain, Sister Ila Gohil, Sister B. K. Sunita, Dr. Amit Biswas, Dr. Sujata Singhi, and Dr. Sister S. B. K. Prabhaji, the founders, the organizers, volunteers, all our brothers and sisters of the Brahma Kumaris headquarters here, my friends and colleagues from the media, from the media studies and teaching community in the audiences and everyone else present here. A very good evening to all of you, and Om Shakti. It's time for me. I'm very nervous, but well, I get by as I write always. It has been an enriching experience for me ever since I arrived here late last evening to the National Media Conference and Retreat. I'm very, very thankful for this opportunity. Plenary Session 1, Vision and Mission for a Value-Based Society, Moolya Nishtha Samaj Ke Liye Drishti Aur Uddeshya, a lot has been said about it already. मुझसे जो आने वाले हैं मेरे हैं वो भी बहुत कुछ कहेंगे जो आ चुके हैं बहुत अच्छा बोल चुके हैं मैं आई वुड प्रोबेबली स्टार्ट ऑन दिस टॉपिक बाय स्टेटिंग व्हाट आई हैव बीन थिंकिंग एंड व्हाट आर माय एक्सपीरियंसेस एंड अबाउट 42 इयर्स नाउ वेल अ लॉट हैज बीन गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड वी हैव वॉर रेजिंग इन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर चिल्ड्रन आर बीइंग किल्ड मर्सीलेस एंड वी समटाइम्स फील हैव वी फेल्ड एज ह्यूमैनिटी बिकॉज There is nothing we can do. Helplessly, we feel dejected. And, you know, you realize that the world has not learned its lessons from the pandemic that brought us face to face with the frailty of human life and existence. Yet, we are here in a world full of misery, death, dejection, divisiveness. So where do we turn to? Where do we go? Well, the only space in desperate times is our inner world, and perhaps therein lies the answer, as we have all heard, most of the miseries of the humankind. For me, there are a couple which I would like to address this topic, as I see and try and navigate the world like an observer, jise drishta kehte hain. There are some of them are not cast in stone. These are evolving, just like us. They are free-flowing, forever in motion and churning. I might change them tomorrow. I may sort of develop on them more, but I'm just putting, often find myself asking this question, that from times immemorial, we have witnessed throughout histories and our own experiences, we have had men, godlike men, godly men, as in people, processes, organizations, trying to make a difference, trying to bring a change. Fight the forces of negativity and devise about a world that is just, harmonious and enriching, which is based on a sense of fairness and goodness for all. Years after years, we see that the idea has remained elusive. The idea of the ideal world, I mean. Dilli ki hoon, toh isse kehna chahungi, har baar lagta hai ki Dilli dur hi hai. Toh wo kahan hai, wo dunia kahan hai. And how do we go about realizing this vision? Of the topic here on which we are all talking. First, we have to realize that change is not rapid. That is what I have realized. That if it were to come at any place, that place is me. The need for conscious inner work, inner engineering, is an ever-evolving process. I may take 3 steps forward, but then immediately I also take 2 steps backwards. But if I'm mindful, I feel we will get there. But as I've learned from my experiences, जो हाशिए पे हैं और हमेशा से ही हाशिए पे हैं बहुत सी संस्थाएं हैं ऑर्गेनाइजेशन हैं तो क्यों हैं वो हाशिए पे जब मैं थिएटर है स्टोरी टेलिंग करती हूँ जिसमें हम लोगों को ऐसे स्किल्स तो मैं ये सोचती हूँ कि चेंज कैनॉट बी पैसिव वी कैनॉट से नॉट माई सर्कस नॉट माई मंकी That even as people are killed, wars and strifes are raging. Make us active, mindful agents and not passive on thinking of a promised heaven. That heaven may not arrive if it happens in it. Lastly, no changes from the political, social and economic realities of our times, the context we navigate. We need to participate in it actively and hold those who we choose to represent us accountable. In fact, actively take this message. Friends, we are all in this together, and the best way we can contribute is by truly staying honest to the task we have at hand. So what is my task? So my task, whether it is I'm teaching in classrooms, reporting from the ground, moderating debates in the studio, we have to strive to disseminate the truth, even if the truth does not suit my ideology, my context, or my beliefs. I should be able to speak the truth fearlessly. I understand my friends in the media would be a little rattled by it because they know this is not something simple. Someday, every day, with the resolve that comes from being an active, mindful and vision for a value-based society. It is something we all have an answer for. ये कोई ऐसा उत्तर नहीं है इसका जो हमको नहीं पता है. In fact, जब भी कोई कहता है आप आइए और स्पीच दीजिए, मैं घबरा जाती हूँ. वैसे मैं बहुत टॉकेटिव हूँ. वो इसलिए क्योंकि मैं कौन हूँ जो किसी को स्पीच दे, किसी को कुछ बताए या अपने विचार भी प्रकट करे. क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप एक 10 मिनट के समय में मेरे विचार बदल सकें या मैं आपके विचार बदल सकूं. हम कोशिश कर सकते हैं. सो दिस इज माई आंसर फॉर अ विजन एंड मिशन फॉर अ वैल्यू बेस्ड सोसाइटी. इट इज अ सोसाइटी बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. इट इज एन इंक्लूसिव सोसाइटी वेयर नो वन इज सिंगल्ड आउट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, आइडेंटिटी और रिलीजियस बिलीफ्स. एंड अल्टीमेटली अ सोसाइटी वेयर नो सच मैन मेड आइडेंटिटीज मैटर एट ऑल. A society which brings forth the best in oneself, ultimately leading to the erasure of this self. As someone rightly said, I is illness. This W is wellness. I would like to end by stating that there are many mountains. There are many ways to see and perceive those mountains, and there are many paths to take to the mountain. Each one ultimately striving for this inclusive wellness for life and living, and wealth of the mind, body and soul for all. And the vision for such a world are beautifully enshrined in the tenets of our constitution, as Professor Dr. Mansingh Parmar earlier mentioned, and very rightly so. I would like to end here on this hopeful and positive note. Thank you very much. I am truly humbled and honored by this opportunity that came my way through a fortunate coincidence, which is another story altogether. And I hope I have been able to add to this wonderful event with my two bits. Thank you for your patience and warmth. Om Shanti.
Thank you very much, Garima ji. Aapne bahut sundar, bahut sari baatein aapne kahi. One of the things that really clicked with me was inclusive society. Kyunki aajkal ke zamane mein har koi apne bare mein sochte hain, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, लेकिन दूसरों को भी लेकर के हमें आगे बढ़ना है. दिस इज कॉल्ड एज इंक्लूसिव प्रोग्रेस. तो अगर हमें भी आगे बढ़ना है लेकिन दूसरों को भी हमें आगे बढ़ाना है, तो जब ये भावना हमारे अंदर होगा तो जरूर हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम इस समाज में जागृत कर सकते हैं. अभी मैं रिक्वेस्ट करने जा रही हूँ आदरणीय भ्राता प्रवीण कुमार खारीवाल जी, जो MPCG हेड है भारत एक्सप्रेस के, प्रखर एवं गुजारू संपादक के रूप में प्रवीण कुमार खारीवाल जी हिंदी पत्रकारिता के सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व है. कहीं वर्षों से पत्रकारिता अनुभव के साथ प्रवीण जी ने हिंदी पत्रकारिता को एक सुविचारित दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. एक सक्रिय, सजग एवं चिंतनशील पत्रकार होने के साथ प्रवीण जी ने बदल रहे समय और चुनौतियों को के मुताबिक संपादन, प्रबंधन एवं मीडिया मैनेजमेंट की विधा को नए आयाम स्थापित किए हुए हैं. आदरणीय भ्राता प्रवीण कुमार खारीवाल जी,
नमस्कार. ओम शांति. नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस और रिट्रीट में देशभर से पधारे हुए हमारे मीडिया के साथी, जो कि अलग अलग सत्रों में अलग अलग मुद्दों पर विचार मंथन का साक्षी बन रहे हैं, और उनको मार्गदर्शन देने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से जो विषय विशेषज्ञ आए हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं. आज के इस सत्र में मुख्य अतिथि के पद पर शोभायमान आदरणीय सिस्टर BK प्रभाजी, प्रोफेसर डॉक्टर एस अरुला चलवन जी, भ्राता श्री राजेश राजौरे जी, प्रोफेसर गरिमा जी दत्ता जिन्हें अभी जस्ट हमने सुना, बी के सविता जी, ब्रदर दिलीप जैन साहब, सिस्टर इला गोहले जी, सिस्टर बी के सुनीता जी, डॉक्टर अमित विश्वास जी, डॉक्टर सुजाता सिंघी जी, और इस कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रहे हैं सिस्टर बी के सुमन जी, इंदौर से हमारे स्टेट प्रेस क्लब के सभी साथी और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के इंदौर सेंटर से हम सबको यहाँ पर सहिष्णु लेकर आई सिस्टर अनीता जी। मैं हिंदी पत्रकारिता का जो एक गढ़ है या उसे राजधानी कहें उस शहर से ताल्लुक रखता हूँ, इंदौर से, और इंदौर के बारे में आप सभी ने पढ़ा और सुना होगा। इंदौर देश में स्वच्छता के मामले में लगातार सातवीं बार अव्वल आके कीर्तिमान बना चुका है, वो इंदौर शहर है। इंदौर शहर भारत का संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का शहर है। खेल की बात करें, शंकर लक्ष्मण हॉकी के जो जाने माने खिलाड़ी थे उनका शहर है, क्रिकेट के कैप्टन मुश्ताक अली का शहर है, नरेंद्र हिरवानी का शहर है, राहुल द्रविड़ का शहर है, कमेंटेटर सुशील दोषी का शहर है। फिल्म एक्टर की बात करें तो जॉनी वॉकर का शहर है, फिल्म लेखक सलीम का शहर है, उनके सुपुत्र सलमान खान का शहर है। गीतकार की बात करें, शायर की बात करें तो राहत इंदौरी का शहर है, स्वानंद किरकिरे का शहर है। इंदौर जाने माने पेंटर MF हुसैन का शहर है। गायकी की बात करें तो इंदौर लता मंगेशकर का शहर है, उस्ताद आमिर खान साहब का शहर है, किशोर कुमार का शहर है, कुमार गंधर्व साहब का शहर है। मीडिया जो हमारी फील्ड है उसकी यदि हम बात करें तो जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता को शिखर पर पहुंचाया है, राजेंद्र माथुर का शहर है, प्रभा जोशी का शहर है, राहुल बारपूते का शहर है, माणकचंद वाजपेयी जी का शहर है, शरद जोशी जी का शहर है, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक का शहर है, अभय छजलानी का शहर है, रमेश चंद अग्रवाल का शहर है। मैं उस शहर से हूँ जहाँ से सर्वाधिक प्रसारित दैनिक अखबार का दैनिक भास्कर का प्रकाशन होता है, जो इस समय विश्व का सर्वाधिक प्रसारित अखबार है, और मैं उस शहर का बाशिंदा हूँ जिसे हिंदी का पहला न्यूज़ पोर्टल वेब दुनिया को संचालित करने का गौरव हासिल है, और मैं अब उस शहर का बाशिंदा भी हूँ जहाँ पर 4 तारीख को एक कीर्तिमान बनने वाला है, सर्वाधिक मतों से जीतने वाले सांसद शंकर ललवानी का, क्योंकि वहाँ पर एन वक्त पर प्रतिद्वंदी पार्टी के प्रत्याशी मैदान से हट गए और लगभग 16-17 लाख मतों से जो मतदान हुआ है उसमें एक तरफा नतीजा आने वाला है, तो एक कीर्तिमान वहाँ से वो भी बनने वाला है। मैंने जिन सब लोगों का जिक्र किया इंदौर का, ये सब अपनी अपनी फील्ड के सशक्त हस्ताक्षर थे और उन्होंने अपने अपने फील्ड में मूल्यों की रक्षा करी, न केवल रक्षा करी बल्कि नए आयाम गढ़े, नए नए मूल्य उन्होंने गढ़े, और आज उन मूल्यों का समाज में हम लोग हास्य होते हुए देख रहे हैं, मूल्य तेजी से नीचे की ओर जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का जो अंतर है वो हम स्पष्ट देखते हैं कि किस तरह से मूल्यों की बातें अब बेमानी सी लगती हैं। जो पुराने लोग हम बैठे हैं यहाँ पर या हमसे सीनियर लोग बैठे हैं उनके समय के मूल्य और इस समय जो नई पीढ़ी हमारे सामने है 20 साल के 22 साल के 25 साल के 30 साल के, हम उनके भी चरित्र देख रहे हैं, उनकी भी चाल देख रहे हैं, उनके भी चेहरे देख रहे हैं। कि किस तरह से उन्होंने पुरानी चीजों को बदल दिया है। मूल्य या सामाजिक बातें कहां से आएगी, वो आती है घरों से, क्योंकि सबसे पहली पाठशाला माँ बाप होते हैं, घर होते हैं, परिवार होता है, समाज होता है। लेकिन नई पीढ़ी के लोग जो हैं वो समाज से कट चुके हैं पूरी तरह। हम लोग यहाँ चिंता कर रहे हैं, लेकिन जिनके लिए हम चिंता कर रहे हैं उनको हमारी बातों से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि वह न तो पुरानी किताबें पढ़ते हैं, न पुराने जो दिग्गज लोग हैं उनके नाम भी सुनना पसंद नहीं करते हैं, न वो मंदिर जाते हैं, न मस्जिद जाते हैं, न गुरुओं के आश्रम में जाते हैं, न कथाओं का हिस्सा बनते हैं। उनकी अपनी एक दुनिया है, उनका अपना एक वर्ग है। आज हमारे घर में यदि कोई चाचा मामा फुआ फूफा आते हैं तो हमारे बच्चे अपने कमरों में मशगूल रहते हैं, बोलना पड़ता है कि आओ आओ बेटा, इनका अभिवादन करो, इनके पैर छू के आशीर्वाद लो। उनका अपना एक वर्ग है, वर्चुअल दुनिया में खोए हैं, उनके दो चार आठ दोस्त हैं, वो उनकी जिंदगी है, वो उनके लिए सब कुछ है। उनके लिए वो रात जग सकते हैं, उनके लिए 100-200 किलोमीटर जा सकते हैं, देश विदेश में जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो हाँ, मैं वही बता रहा हूं कि मीडिया और कोरोना का जो काल था हमारा, उसमें भी एक बार ऐसा दौर आया कि जब मूल्यों की बातों को लोगों ने देखा समझा लेकिन उससे भूल गए। तो इन सब चीजों का मैं वृतांत इसलिए बता रहा हूं कि मीडिया की तमाम कोशिश करने से भी बहुत कुछ हासिल होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम जिन लोगों के लिए सोच रहे हैं, हम जिस पीढ़ी के हैं, आप जिस पीढ़ी के हैं, हम फिर भी उस बात की फिक्र कर रहे हैं, लेकिन नई पीढ़ी क्राइम देखना चाह रही है, नई पीढ़ी रील देखना चाह रही है, नई पीढ़ी वल्गर स्टोरियां देखना चाह रही है, नई पीढ़ी ओटीटी की फिल्में देखना चाह रही है, गाली गलौज की बात करना चाह रही है, नशा करना चाह रही है, नाइट लाइफ में मशगूल होना चाह रही है। तो ऐसे में हमारे जितने भी प्रयास है ये मुझे बेमानी नजर आते हैं। तो इसे हमें सोचना होगा कि एक बड़ी आबादी जो लगभग 30-40% आबादी है, जिसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। सिर्फ अच्छी बातें करने से है, मैं समझता हूं कि बहुत कुछ नहीं हो सकता है। मीडिया का जो रोल है, मीडिया तो अपना रोल हमेशा से ही निभा रहा है। हम लोग भी 35 साल हो गए पत्रकारिता में, अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी मंच से कहा गया कि नेगेटिव खबरें फ्रंट पेज पे स्थान लेती है, क्या करें। समाज या जो समाज का एक बड़ा वर्ग है वो इसी तरह की बातें देखना, सुनना, पढ़ना पसंद करता है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है जो इस तरह के, मैं समझता हूँ, आयोजन से निपटने के लिए चर्चा का विषय बनती है, और सभी को मिलजुल कर इसका मंथन करना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी चुनौती से कैसे निपटे, क्योंकि ये बातों से नहीं होगा, क्योंकि बात तो सुनी नहीं रही नई पीढ़ी, और इसके बाद वाली जो पीढ़ी आएगी वो पता नहीं क्या करेगी। तो ये सारे प्रश्न जो है समसामयिक है, इस पर हम सभी को सोचना चाहिए, और जहां पर हम हैं, जिस अखबार में हम हैं, जिस मीडिया संस्थान में हम हैं, वहाँ जो बेहतर हम कर सकते हैं भले ही छोटे स्तर पर करें, हमें करना चाहिए। इस तरह के प्रयास, इस तरह की कॉन्फ्रेंस उसी का एक हिस्सा है, लेकिन ये छोटे प्रयास है, इसके लिए हमें बड़ी तेजी से सबको सोच विचार करके आगे बढ़ना होगा कि हम आखिर अपनी लेखनी से या अपने अनुभव से या अपनी जीवन से नई पीढ़ी को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। यदि इसमें हम दशमलव भी आगे बढ़े तो मैं समझता हूं कि इस तरह की जो कॉन्फ्रेंस है उसकी आयोजन की सिद्धता साबित होगी। मैं एक बार फिर से प्रजापिता ब्रह्म कुमार के मीडिया विंग के ओम प्रकाश भाई को याद करता हूं, जिनके जो उनका भी संबंध इंदौर से रहा है, कि उन्होंने लगातार मेहनत करके आज जो पेड़ लगाया है वो काफी बड़ा घना वृक्ष हो गया है। इस तरह की कॉन्फ्रेंस साल में 2 बार होती है, इसमें सभी लोग नए विचारों के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं, और निश्चित तौर पर जब हम यहाँ आते हैं या अन्य हमारे मीडिया के साथी आते हैं तो कुछ न कुछ सकारात्मक सोच और शिक्षा लेके जाते हैं। बाकी जो मैंने विषय थोड़ा सा विषयांतर हुआ, लेकिन उसका दर्द यही है कि हम जिनके लिए करना चाहते हैं उनके लिए किस तरह से करें ताकि चिकने घड़े पे पानी डालने जैसी बात सिद्ध ना हो। आपने मुझे बुलाया, इंदौर से प्रतिनिधित्व दिया, हमारे बहुत सारे साथी आए हैं, सभी यहाँ पर अच्छा महसूस कर रहे हैं, सभी सत्र को अटेंड कर रहे हैं और आने वाले दो दिन में और भी हम कई बातें अच्छी सीख के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता प्रवीण जी का, उन्होंने जरूर ये बात रखी हम सभी के बीच में कि यहाँ आकर के हम सब सुन रहे हैं, बहुत प्रेरणादायी बातें हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन समाज में जाकर के फिर कुछ न कुछ परिवर्तन लाने के लिए हम योगदान जरूर देंगे, क्योंकि जितना नकारात्मकता के ओर ये समाज जा रहा है, एक ऐसी आशा की किरण अगर मिल जाता है तो जरूर परिवर्तन ला सकते हैं। डूबते हुए को तिनके का सहारा कहते हैं, तो तिनका भी मिल जाए डूबते हुए को तो बहुत उसके अंदर परिवर्तन आ सकता है, उसका बचाव हो सकता है। अभी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आदरणीय भ्राता दिलीप जैन, हु इज अ रेडियो जॉकी एंड एक्टर, मुंबई से हैं। आप रेडियो जॉकी हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, डबिंग आर्टिस्ट हैं, एंकर हैं और थिएटर आर्टिस्ट, एक्टर, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदरणीय भ्राता दिलीप जैन जी।
शांति और बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में बोलने का ये मौका प्रदान किया है। मंच पर आसीन जितने भी डिग्निटरीज हैं उन सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, सबको मैं सुन रहा था। 10 मिनट का समय मेरे पास है क्योंकि मैं रेडियो पर काम करता हूं, मैं मेरी नजर घड़ी पर जरूर होती है, तो 5:35 हुए हैं, 5:45 पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी सकारात्मक ऊर्जा आप सब अपनी उपस्थिति से बनाए। कैसे? अब तक जिन जिन को आपने सुना उन सबके लिए जोरदार तालियां बजाकर। जिन मुद्दों को मैं सुन रहा था उन पर अगर हम बात करें तो एक मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट हमारे सामने नजर आता है, वो ये कि मीडिया नकारात्मक बातों को हाईलाइट करता है। और हम मीडियाकर्मी इस बात से सहमत भी है कि हाँ, अखबार खोलते ही ज्यादातर नकारात्मक बातें हमारे सामने आती है, नेगेटिव चीजों पर हमारा फोकस जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है? इसके पीछे नेगेटिविटी बायस नाम की एक चीज हमारे अंदर इनबिल्ट है। आप इसको विस्तार से, क्योंकि मेरे पास 10 मिनट का समय है, लेकिन आप इसको विस्तार से जरूर इंटरनेट पर रिसर्च करके समझने की कोशिश कीजिएगा कि नेगेटिविटी बायस हमारे अंदर अपने आप काम करती है और नकारात्मकता की तरफ हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल ऐसा है कि सड़क पर अगर कोई किसी को पीट रहा है तो वहां भीड़ इकट्ठा हो जाएगी देखने के लिए कि क्या कारण हो गया, क्यों मार रहे हैं। और वहीं पर सड़क के कोने में कोई किसी को सड़क पार करा रहा है, खाना खिला रहा है, तो शायद वहां पर हमारा ध्यान न जाए। इसके पीछे एवोल्यूशन के जरिए ये नेगेटिविटी बायस काम करता है और इसी वजह से ज्यादातर नकारात्मक चीजें परोसी भी जाती है ताकि ध्यान बहुत आसानी से सबका वहां पर चला जाए। लेकिन क्या ये बदला नहीं जा सकता? बिल्कुल बदला जा सकता है। नेगेटिविटी की तरफ अगर हम बिल्कुल अपने आप खींचे जा रहे हैं तो सकारात्मकता की तरफ जाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जैसे ये हम सबका प्रयास है, आज हम इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं और सकारात्मक ऊर्जा लेकर यहां से जाने वाले हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातों को समझने की कोशिश हम करने वाले हैं। रोज थोड़ा सा माइंडफुल होकर सकारात्मक प्रयत्न एज मीडिया कर्मी हमको भी करना चाहिए कि कैसे मैं पॉजिटिव चीजों पर फोकस करूं। सिक्के के दोनों पहलू हैं, नकारात्मक है, डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन सकारात्मक पहलू भी तो है, उसे नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं हम? छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। रेडियो पर मैं काम करता हूं, ये मेरा 23वां साल है एज रेडियो जॉकी, और रेडियो पर एक आम ट्रेंड है कि हंसी ठिठोली होती है, प्रैंक कॉल्स होते हैं, लाइट हार्टेड कॉन्वर्जेशन होता है, शहर के अपडेट्स होते हैं। और ये मुंबई, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, मुंबई में भी सारे रेडियो स्टेशन में इसी तरह का ट्रेंड रहा है, आज भी है। तो मैंने मेरे रेडियो स्टेशन से एक बात प्रपोज की कि क्या मैं कोई ऐसा शो बना सकता हूं या पेश कर सकता हूं जिसमें सकारात्मक बातें हो, हम अपने आप को बेहतर कैसे बनाएं इसकी बातें हो। मेरे रेडियो स्टेशन ने मुझे सपोर्ट किया। पिछले 4 सालों से मैं जो शो कर रहा हूं उसका नाम है लव यू जिंदगी, मुंबई का नंबर 1 शो है वो। प्रयत्न करेंगे तो रास्ता बनेगा, प्रयत्न करना होगा। उस वक्त मेरे मन में भी एक असमंजसता थी कि इस तरह का कंटेंट रेडियो पे किस तरह से कंज्यूम होगा, लेकिन आज जब लोगों की जिंदगी में वो सकारात्मक बदलाव देखते हैं तो बहुत खुशी होती है। रेडियो के साथ जुड़े होने की खुशी, लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने की खुशी। हम बात कर रहे हैं कि समाज में किस तरह से हम एक नई व्यवस्था लेकर आए, नई सोच लेकर आए। मेरे से पहले जो स्पीकर सर आए थे उन्होंने कहा एक इंपॉर्टेंट मुद्दा कि आज की युवा पीढ़ी बिल्कुल नहीं सुन रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिक्के के दोनों पहलू है। जनरलाइज स्टेटमेंट से मैं यकीन नहीं करता, दोनों भी पहलू है। कुछ सुन रहे हैं, कुछ शायद नहीं सुन रहे हैं, शायद ज्यादा लोग हैं जो नहीं सुन रहे हैं। लेकिन युवा पीढ़ी के साथ कॉन्वर्जेशन करना बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर हम देखें तो उनके लिए पूरी की पूरी दुनिया सिमट कर एक स्मार्टफोन में उनके हाथ में आ चुकी है। हम हमारे जमाने की अगर बात करें तो हमारे में पेशेंस था, हम रुक सकते थे हर चीज के लिए। कहीं जाना है तो हम उसकी तैयारी करेंगे, सोचेंगे, समय लेंगे। लेकिन आज की युवा पीढ़ी एक क्लिक पर अपना वेकेशन प्लान कर लेती है, अपना खाना ऑर्डर कर लेती है, और इस वजह से हो क्या रहा है, पेशेंस की कमी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुबह के सेशन में, जैसे मैंने सिस्टर शिवानी को भी सुना था, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हम बदलेंगे नहीं, मैं बदलूंगा, मुझसे शुरुआत होगी। तो क्यों ना हम अपने लेवल पर यह देखें कि किस तरह से युवा पीढ़ी में पेशेंस कल्टीवेट किया जाए। ये एक अलग विषय होगा और यह संभव है। जब हम पेशेंस कल्टीवेट करें, अच्छी चीजें उनको परोसे, तो वो उसे जरूर कंज्यूम करेंगे, वो बदलाव आएगा। ऑफकोर्स धीरे धीरे आएगा, लेकिन आएगा जरूर। हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि वक्त बहुत तेजी के साथ बदल रहा है और युवा पीढ़ी पे फोकस करना बहुत जरूरी है। आज से कुछ साल पहले और अब जब हम देखते हैं तो वो बदलाव हमें अपने अपने घरों में भी महसूस हो रहा है। हमारा घर कहीं ना कहीं समाज का ही तो आईना है। समाज में जो कुछ चल रहा है उसका रिफ्लेक्शन अंततोगत्वा हमारे घरों में दिखने ही वाला है। तो क्यों ना हम वहां से शुरुआत करें। हमारे रेडियो स्टेशन की एक टैगलाइन है, धुन बदल के तो देखो। ये धुन किस चीज की है? ये हमारे सोचने के तरीके की धुन है, चीजों को देखने के नजरिए की धुन है, और जिंदगी को जिस तरह से हम जीते हैं, जिस तरह से समझते हैं, उसकी धुन है। तो अब मुझे लगता है कि समय आ गया है कि धुन बदली जाए, और धुन बदलने की शुरुआत आपसे, मुझसे, हम सब से होगी। कुछ इनिशिएटिव्स जो रेडियो के माध्यम से लिए गए, अब सकारात्मक मीडिया किस तरह से काम कर सकता है, पॉजिटिव चेंज किस तरह से हम लेकर आ सकते हैं। यहां से इस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे 3 दिन लोनावला के एक रिजॉर्ट में बिताने हैं। क्यों? वेकेशन के लिए नहीं, मेरे लिए तो ये मोर देन वेकेशन है, रिजुविनेशन है। लेकिन हम हमारे सुनने वालों में से कुछ लोगों को लेकर जा रहे हैं जिन्हें सिगरेट पीने की बुरी आदत है, लत है, और उनके साथ 48 घंटे हम सारे रेडियो जॉकीज, हमारे पूरे रेडियो स्टेशन की टीम बिताएगी, ताकि जब वहां से लौट कर आए तो उनमें से सारे नहीं पर कुछ तो बदले, जो कहे कि अब मुझे इस लत की जरूरत नहीं है, मुझे समझ में आ गया है कि रियल हैप्पीनेस कहां है। एक इनिशिएटिव जो मुझे याद आता है, अंगदाता। हमने कहा ऑर्गन डोनेशन को लेकर कैंपेन किया, लोगों तक हमारी बातें पहुंचाई। अब हम ये नहीं कहते कि सभी में वो बदलाव आ जाएगा, लेकिन कुछ लोगों में तो वो बदलाव आएगा ही, और बहुत सारे लोगों ने ऑर्गन्स प्लेज किए। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, और सुनना चाहेंगे आप? धन्यवाद। लेकिन मैं समय में मैं कोशिश करूंगा कि फिर कभी किसी और मंच में या होने के बाद भी हम आपसे जरूर मैं जरूर आकर बात करूंगा। पर क्योंकि मेरे अंदर अब क्या हो गया कि इतने सालों से रेडियो करने की वजह से मैं समय की मर्यादा को नहीं तोड़ सकता, तो आई होप कि आप उसको रिस्पेक्ट करेंगे। मेरे पास एक आखिरी का मिनट है, उसमें मैं यही कहना चाहता हूं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और ये हम सब मीडिया कर्मी के लिए है, बहुत जरूरी है। ये लाइनें आप 100 बार सुन चुके होंगे, आज मुझसे भी सुन लीजिए। फिर वही बात है कि सारे नहीं पर शायद कुछ तो बदलेंगे, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। आप सब भी जहां हैं, जिस मीडिया हाउस के साथ जुड़े हुए हैं, कोशिश करते रहिए सकारात्मक बदलाव लाने की। हम जरूर 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 पॉजिटिव चेंज लेकर आएंगे। जब मीडिया का नाम लिया जाएगा तो पहले पॉजिटिविटी याद आएगी, नेगेटिविटी नहीं, इतना जरूर कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता दिलीप जी का। आपने सकारात्मक ऊर्जा हर जगह पर अभी पूरे हॉल में स्प्रेड कर लिया है। वैसे हम इस बात में अटूट विश्वास रखने की जरूरत है, पॉजिटिविटी इज मच 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 मोर पावरफुल देन नेगेटिविटी। जब इस बात में हमारे विश्वास है तो जरूर वो सकारात्मक ऊर्जा को जब हम प्रकाश पूरा प्रकाश उस प्रकाश को हम फैलाएंगे तो नकारात्मक ऊर्जा ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जितना हम अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते जाएंगे तो जरूर हम इस समाज में उस ऊर्जा को हम स्प्रेड कर सकते हैं। अभी मैं अनुरोध कर रही हूं बहन इला गोहेल जी, जो डेप्यूटी डायरेक्टर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म अहमदाबाद, एंड शी इज ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ ट्रिम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड विच एंड ऑल्सो रिवॉयल which is a digital news portal and also the director of Reliable Tools Private Limited and a mentor of startups. Most respected Ila Goyal ji, aap apna anubhav hamare samaksh rakhenge.
Thank you. Om Shanti. Manchester upasthit sare अतिथि विशेष और सभागृह में उपस्थित सभी मीडिया कर्मी और भाई बहनों को मेरा नमस्कार। क्या हम एक बात से सहमत होंगे कि पूरे दिन में क्या मीडिया हमारे साथ जुड़ता है या मीडिया की कोई भी ऐसी बात है जिससे हम अलग होके एक दिन निकाल सकते हैं? हम मतलब मैं, आप और सब लोग, मीडिया कर्मी और नॉन मीडिया कर्मी, सुबह उठते हैं तो अखबार चाहिए, आगे जाने के लिए फिर कुछ न्यूज देखने हैं, ऑफिस चलते हैं तो रेडियो सुनते हैं, ऑफिस में जाएंगे तो डिजिटल पे काम करना है, सोशल पे कुछ अपडेट्स डालने हैं, राइट? और शाम को घर पे आएंगे तो भी कुछ ना कुछ चर्चा होगी। उसमें से क्या आपको पॉजिटिव न्यूज दिखने या सुनने का मौका मिलता है? कितने लोग हाथ ऊपर करेंगे कि हाँ पॉजिटिव न्यूज फ्रंट पेज पे होता है? एक एक पहल दिन दिव्य भास्कर ने की है, वीक में एक दिन हर मंडे को नो नेगेटिव न्यूज करके न्यूज़पेपर निकलता है, तो उसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। कोशिश की है और कोशिश सफल भी हुई है। तो यहाँ आज का जो ये मुद्दा है कि क्या मीडिया का रोल ये अच्छा हो सकता है समाज को बेहतर बनाने के लिए? हाँ, हो सकता है, सिर्फ कोशिश करनी है। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता? कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, है ना? तो एक पत्थर उछालने की देरी है। मीडिया कर्मी यहाँ बैठे हैं, हृदय से एक्सेप्ट करेंगे कि हम नेगेटिव न्यूज की वो टीआरपी की रेस में चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए नेगेटिव न्यूज छापने और दिखाने के अलावा हमारे पास ऑल्टरनेट नहीं बचता। लेकिन क्या ये सही है? समाज में पॉजिटिव न्यूज भी तो होते हैं ना। सुबह उठ के अगर हर बंदे का, हर शख्स का एक शुरुआती 2-3 घंटे का समय पॉजिटिव न्यूज के साथ हो, तो क्या हम छोटा सा प्रयास करके लोगों की जिंदगियां बदलने में एक रीजन नहीं बन सकते? बन सकते हैं ना। कुछ पॉजिटिव चीजों के साथ हम बदलाव कर सकते हैं। जैसे मैं एक मीडिया शिक्षण संस्थान के साथ जुड़ी हूं, तो हमने कोविड के टाइम पे एक प्रयोग किया था। जैसे कोविड जब फैल रहा था तो मीडिया दिखा रहा था कि यहाँ पे इतनी डेथ हो चुकी है, इतने लोग इन्फेक्टेड है, तो सब जगह पे नेगेटिविटी, और उसकी वजह से लोग स्ट्रेस में जा रहे थे, डिप्रेशन में जा रहे थे। तो हमने सोच विचार के बाद एक ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, अच्छी खबर। उस टाइम पे जितने भी अच्छी खबरें कहीं ना कहीं कोई कोने में पब्लिश होती थी, तो हम उसको ढूंढते थे, लोगों के सामने उसका एक ऑडियो विजुअल एपिसोड बना के उसको फ्लोट करते थे। वैसे हमने 200 से ज्यादा एपिसोड, वीकली एपिसोड था वो, पेंडेमिक के टाइम पे हमने फ्लोट करना शुरू किया था, और उससे हमको बहुत बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिले थे। तो ये एक छोटा सा प्रयास हमने किया था, और मैं अनुरोध करना चाहूंगी मेरी मीडिया फ्रेटर्निटी से कि क्या हम भी एक छोटा सा ये हमारा एफर्ट एक्सटेंड करने में हम कोशिश करेंगे। सुबह शिवानी दीदी ने बताया था कि आग बुझाने वाली जो टीम थी ना, आग लगाने वाली नहीं है, लेकिन आग बुझाने वाली टीम की जो बात थी कि एक बूंद पानी मेरी ओर से भी छिटकेगा तो मेरा एक योगदान पॉजिटिव साइड जाएगा, तो क्या हम ये अपने आप को कमिट कर सकते हैं कि हम ये छोटा सा योगदान देने के लिए यहां से बाहर जाएंगे तो अपनी कोशिश जारी रखेंगे? दूसरी एक बहुत चिंता की बात है कि सोशल मीडिया का प्रसार जिस तरह से बढ़ रहा है, जिसमें इंडिया जो है वो दुनिया के टॉप कंट्रीज में आता है कि जिसमें सोशल मीडिया का कंजम्पशन हमारी युवा पीढ़ी बहुत कर रही है। एवरेज इंडियन के लिए बोला जाता है कि दिन का 2.5 से 3 घंटा वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे गुजारते हैं। फिर अगेन एक क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया पे वो क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं? ज्यादातर नेगेटिव न्यूज की भरमार, रील्स की भरमार, या ऐसी कुछ चीजें हैं जिससे क्रिएटिव वर्क, प्रोडक्टिव वर्क कम होता है, लेकिन भ्रमित करने वाली बातें ज्यादा होती है। तो वो समय अब दूर नहीं कि जिससे ये सोशल मीडिया डिप्रेशन लाने का काम करता है, क्योंकि लाइक्स नहीं मिलती, फॉलोज नहीं बढ़ते, कमेंट्स नहीं आती, तो उससे क्या होता है कि डिप्रेशन होता है यंगस्टर्स को। ये डिप्रेशन को दूर करने के लिए सोशल मीडिया के डी एडिक्शन सेंटर्स, रिहेब सेंटर खोलने की समय की मांग आएगी। आज से 2-4 साल में ये भारत में भी शुरू होगा, तो उसको वहां तक पहुंचने से पहले क्या हम रोक लगाने के लिए कुछ अच्छा कंटेंट जनरेट करके मीडिया के द्वारा फ्लोट कर सकते हैं? जेंजी को कनेक्ट करने के लिए क्या कुछ हम क्रिएटिव चीजें कर सकते हैं? अगर ये मेरा मैसेज अगर एक लोग तक भी सही मायने में क्लिक हो गया तो मेरा यहाँ आना सार्थक होगा। ब्रह्मा कुमारीज ने जो इतना अच्छा कॉन्फ्रेंस यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, उनका भी ये प्रयत्न सार्थक होगा। इस सार्थक प्रयत्न में आप सबसे ये अनुरोध है कि आप लोग अपना अपना जितना भी हो सके योगदान दीजिए, और ये क्रुशियल समय में मेडिटेशन एकमात्र उपाय है जिससे कि डिप्रेशन से बाहर आया जा सकता है। तो ये इसके लिए जोरदार तालियां हो सकती है ब्रह्मा कुमारी इसके लिए। ये क्रुशियल समय में भी पॉजिटिविटी फैलाने का काम करते हैं। मैं एक दिन हुआ मुझे यहाँ आए हुए, लेकिन यहाँ आने के बाद जो क्राउड मिलता है, जो रिफ्लेक्शन मिलता है, वाइब्स मिलती है, वो पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, क्योंकि सब लोग वही दिशा में अभी फ्लोट हो रहे हैं, और यहाँ से बाहर निकल के जो चीजें आएगी उसमें भी फर्क आएगा। तो तो एनर्जी जनरेट की जा सकती है। यूनिवर्स में हम जो सोचते हैं वो रिफ्लेक्ट होके वापिस हम तक ही आता है। जो दिखता है वो बिकता है। तो दिखाने के लिए हम पॉजिटिविटी स्प्रेड करने का काम शुरू करेंगे। इस मंच पर आके मेरी बात यहाँ आप तक पहुंचाने का जो मौका मुझे दिया है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम शांति।
थैंक यू वेरी मच बहन इला का। अभी तक बहुत सुन रहे हैं, अभी मैं अनुरोध कर रही हूँ ब्रह्मा कुमारी सुनीता दीदी से कि आकर के हमें मेडिटेशन कराए, वो अनुभूति में ले चले कि पॉजिटिविटी और पावरफुल पावर का अनुभव हम सभी को कराएं। आप मीडिया विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं दिल्ली जोन के, और पिछले 41 सालों से आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दिल्ली जोन में दे रहे हैं। आप ईस्ट दिल्ली के ब्रह्म कुमारी सेंटर्स के डायरेक्टर हैं, स्पेशली जो मंडावली मयूर विहार फेज 1, 2, 3 गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा के जो सेंटर्स हैं आप उसके डायरेक्टर हैं। अभी मैं अनुरोध कर रही हूँ आदरणीय सुनीता दीदी जिससे कि हम सभी को मेडिटेशन का अनुभव कराएं।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सभी मूल्यनिष्ठ के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन रहे थे। मूल्यनिष्ठ समाज में एक बनाने के लिए हम सभी का सहयोग और खास मीडिया का सहयोग चाहिए। मैं हमारे सम्माननीय मंच और सभी भाई बहनों मीडिया के कर्मी सबका तहे दिल से अभी थोड़ी देर योग करने के लिए अनुरोध करूंगी। तो मूल्यनिष्ठ के लिए मूल्य में बहुत सारी बातें आती है, जो पॉजिटिव बातें अभी बता रहे थे वो सब मूल्य चाहिए। मूल्यनिष्ठ समाज हम सतयुग को कहते हैं, जो दैवी दुनिया सभी के अंदर अगर पॉजिटिव मूल्य आ जाए तो हम वो मूल्यनिष्ठ समाज को जल्दी तैयार कर सकते हैं। तो अभी हम सभी चलिए मूल्यनिष्ठ सागर, जो परम पिता परमात्मा है मूल्यों के सागर, उनके पास चलते हैं, उनके सानिध्य का अनुभव करेंगे और उनसे सकाश लेंगे, ताकत लेंगे, तो जल्दी इस परिवर्तन के कार्य में हम सफल हो पाएंगे। तो परमात्मा के पास चलने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को जहाँ जाना होता है थोड़ा तैयारी भी करते हैं ना, तो हम थोड़ा एकाग्र होकर के अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके आराम से बैठिए। तो सारे दिन में हम मैं और मेरा शब्द बहुत यूज करते हैं। मैं और मेरा, मैं आत्मा और मेरा शरीर। तो अब हम शरीर की दुनिया को थोड़ी देर के लिए शरीर को यहाँ बैठा के आराम से अपने मन बुद्धि को उस परम पिता परमात्मा के पास लेके चलेंगे। तो इस शरीर के अंदर मैं कहने वाली शक्ति आत्मा, एक अदृश्य शक्ति चैतन्य शक्ति, इस शरीर रूपी कुटिया में मेरा स्थान भ्रिकुटी के बीच त्रिकुटी के मध्य में विराजमान हूं। मैं चमकती हुई एक दिव्य सितारा हूं। मेरी विशेष 3 शक्तियां मन, बुद्धि और संस्कार है। मैं आत्मा, इस शरीर के मालिक हूं। अनेक नाम रूप वाले शरीर लेकर इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजा रही हूं। अब मुझे इस पाठ से परे थोड़ी देर के लिए अपने पिता के सानिध्य में चलना है। मेरी आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, पवित्रता, स्वरूप है। अब मैं अपने मन बुद्धि से इस भौतिक दुनिया से पार आकाश तत्व से पार ब्रह्ममय तत्व के ओर चलते जहां मेरा अपना घर अपने पिता का घर सुनहरी गोल्डन कलर के चमकता हुआ देश है। मेरे पिता परम पिता परमात्मा मेरे तरह चमकते हुए अखंड ज्योति स्वरूप है। शांति के सागर है, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शक्ति के सागर, पवित्रता के सागर, सत्चित आनंद स्वरूप है। मेरे पिता के सारे मूल्य मेरे ऊपर उतर उतर कर आ रहे हैं। मैं एक मूल्यवान मनुष्य, दैवी मनुष्य, देवी के रूप में अनुभव करते हैं। मैं आत्मा अब इस कर्म क्षेत्र पर अपने शरीर में फिर से कर्म क्षेत्र पर उपस्थित होते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
सुनीता दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर अनुभूति कराने के लिए। अभी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करने जा रही हूँ आदरणीय डॉक्टर अमित विश्वास जी से कि आप आकर के अपना विचार हमारे समक्ष रखेंगे। डॉक्टर अमित कुमार विश्वास जी महात्मा गांधी महाराष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के सहायक संपादक के रूप में कार्यरत है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय त्रिमासिक पत्रिका बहुवचन के सहायक संपादक है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पोर्टल hindisamay.com के संपादक भी हैं। इस पर हिंदी के महत्वपूर्ण 10 लाख पुष्ट हिंदी पाठकों के लिए उपलब्ध करवाए हैं। आप युवा लेखक पत्रकार हैं। आप आकाशवाणी से भी जुड़े रहे हैं। 3 दर्जन से अधिक कार्यक्रमों का प्रसारण हो चुका है। आप राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजे जा चुके हैं। हाल ही में आपको गांधी की अहिंसा दृष्टि पुस्तक पर महाराष्ट्र साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। मोस्ट रेस्पेक्टेड डॉक्टर अमित विश्वास जी।
ओम शांति। सम्मानित मंच एवं सभागार में उपस्थित मेरे गुरुवर प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, गुरुवर प्रोफेसर मानसिंह परमार जी एवं सुधी मीडिया के सुधी अध्यक्ष, कल से मैं यहाँ आकर मीडिया की नैतिकता के संदर्भ में, नैतिक मूल्यों के संदर्भ में, पॉजिटिव किस प्रकार से हम लोग खबरों को देते समय किस प्रकार से पॉजिटिव तरीके से हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं, इसको लेकर कल से मैं सुन रहा हूँ। इतना अच्छा लग रहा है कि मैं वर्ष 2005 में पहली बार आया था प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में, आदरणीय स्वर्गीय कमल दीक्षित सर के साथ आया था। और उस समय से ये थी कि जब कभी भी मौका मिले तो मैं पुनः इस मंच पर आऊं। आज यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप सभी को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन प्रणाम। सर मैं एक निवेदन के साथ ये कहना चाह रहा हूं कि पत्रकारिता आज के दौर में, पत्रकारिता के कई सारे स्वरूप हैं, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और आजकल तो इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक, ट्विटर सब हैं। ये इन सब मंचों पे आज के दौर में जो कंटेंट है, कंटेंट पर डिपेंड कम हो गया, फॉलोअर्स, लाइक्स, और जब भी देखते हैं कि हमें युवा पीढ़ी, खास करके अभी चर्चा उठ रही थी, बात हो रही थी कि युवा पीढ़ी फोन से, मोबाइल फोन से, इंटरनेट से चिपके मिलते हैं, आखिर कारण क्या है, किस प्रकार से हम मीडिया में जो पॉजिटिव खबरों के बजाय हम नेगेटिविटी, इंटरटेनमेंट पे हम ज्यादा शॉर्ट्स, जितना अधिक लाइक्स होते हैं शॉर्ट्स तुरंत तुरंत क्षण भर में जा रहा है। कोई भी अब मैं नहीं देखता हूं कि अखबार का संपादकीय पृष्ठ पढ़ने के लिए इच्छुक है, अगर पढ़ते भी हैं तो जो गिने चुने लोग हैं वही पढ़ते हैं। तो इंटरटेनमेंट का नया रूप अभी जो है यूट्यूब के माध्यम से आ गया है। अभी मैं पत्रकारिता से हम आशय, पत्रकारिता पत्रकारिता से आशय पवित्र, प से पवित्र भाव से, त्र से त्रस्त मानव के हित हेतु किया गया, का से कार्य, री से जीवन की रिक्तता को भरकर सामाजिक समरसता के लिए तारतम्यता लाना है पत्रकारिता। लेकिन अब जो पत्रकारिता का अर्थ बिलग हो गया है, अब जो मीडिया कहलाता है, मीडिया मीडिया, मैं मीडिया पर्सन हूं, कोई नहीं कहता कि जब पत्रकारिता का मतलब, हम लोग जब पहले समझते थे पत्रकारिता का मतलब बाबूराव विष्णु पराड़कर से लेके बड़े बड़े संपादक जिनके के नैतिक मूल्य, नैतिक आदर्श, जिनके के लिए हम लोग पढ़ते रहे हैं कि पत्रकार का मतलब क्या होता है और आज पत्रकार का मतलब क्या हो गया। जब बात उठती है मीडिया की नैतिकता के संदर्भ में, आदरणीय सर बैठे हैं संजय द्विवेदी सर और परमार सर भी मीडिया की नैतिकता पर बात करते रहते हैं, तो एक ही हम शब्द में कहेंगे, मीडिया नैतिकता अच्छे आचरण और नैतिक मूल्यों के सिद्धांतों को संदर्भित करती है, जो मीडिया उद्योग में काम करने वाले व्यक्ति और संगठनों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। अब मेरे मन में एक सवाल ये उठता है कि एक हाल फिलहाल में एक स्टोरी आई थी राजस्थान में, नागौर या उसके आसपास के एक चाय दुकानदार बहुत परेशान था। अब इसकी भनक पत्रकार को लग गई, वो बेचारा खबरिया चैनल वाला पत्रकार, उसने क्या किया, कहा क्या कि बस आपको मैं न्याय दिलाऊंगा। करना क्या है, बोले कि बस आपको थाना चलना है। थाना चल के क्या करना है, बोले कि बस आप एक नाटक करना, केरोसिन ऑयल डालना और जो है माचिस मारना, मैं आपको बचा लूंगा, मरने थोड़े दूंगा। उनके झांसे में आ गए, बेचारे परेशान थे, कई वर्षों से पुलिस से तंग आ चुके थे। उन्होंने वही किया जो पत्रकार ने कहा, और वो खबरिया चैनल का पत्रकार उसकी वीडियो बनाता रहा। ये वीडियो बनाना जो है पत्रकार के लिए, वो भी नहीं चाहता, कोई भी पत्रकार ये नहीं चाहता कि इस तरह की मैं काम करूं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, तो वही बाजारी दबाव, मालिक का टीआरपी रेटिंग। तो ये टीआरपी रेटिंग कैसे आया, तो जो मीडिया में जो बड़ी पूंजी लगी हुई है, कई सारी फर्में हैं जो कि जैसे टाइम वार्नर हैं, डिज्नी हैं, न्यूज कॉरपोरेशन हैं, वाईकॉम हैं, टीसीआई हैं, ये पूरे के मीडिया कंटेंट को नियंत्रित करते हैं। वो जितनी भी, अब मैन्युफैक्चरिंग कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि किस प्रकार से नॉम चॉम्स्की ने लिखा है कि किस प्रकार से फिल्टर किया जाता है, हमारी जो जन सरोकार के मुद्दे हैं वो नहीं है, गायब कर दिए जाते हैं। कैसे गायब कर दिए जाते हैं, जैसे भूख की सवाल हैं, जैसे बेरोजगारी के सवाल हैं, जैसे थर्ड जेंडर के सवाल हैं, आदिवासी मुद्दे हैं, इन पर जो है हम नदारद हैं। हमें कहा कि गपशप, कहा कि फिल्मी स्टोरी, हमें सेक्स पे स्कैंडल पे जो खबरें परोसी जाती है, ठीक है, जो भी आप बाजारी प्रवृत्ति को लेकर करते हैं करिए, लेकिन कि जो जन सरोकार की पत्रकारिता के नाम पर हो रहा है, इस पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। अब सर, वर्ष 2000 सबसे ज्यादा मीडिया नैतिकता के संदर्भ में, मतलब एक ये मैं कहना चाह रहा हूं कि दुनिया में सब लोग भारत की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। हमारे मेधा जब जाते हैं बाहर तो उनकी पूछ होती, क्यों पूछ होती है, तो उनका यह कहना है कि भारतीय हैं तो जरूर जो है ये सभ्य होंगे। अपनी बेटियों विदेशी, मैं वर्धा में रहता हूं, गांधी जिला है, वहां पे कई सारे युवा की शादी जो है विदेशी लड़कियों से हो रही है। कहते हैं क्या कि बुद्ध के देश के हैं, महावीर के देश के हैं, तो यहां पे करुणा, ये लड़के जो होंगे करुणा वाले होंगे, ये धोखा नहीं देंगे, तो इस प्रकार की हमारी छवि है। एक विदेशी महिला अभी आई थी, बोली क्या कि सबसे आपके यहां की सबसे अच्छी बात क्या लगती है पता है मुझे, आपका परिवार है, परिवार नाम की संस्था है। हमारे यहां तो कोई माँ कौन है पता नहीं, पिता कौन है पता नहीं, तो हमारे यहां अभी भी संयुक्त परिवार नाम की संस्था जीवित है, ये हम लोगों के लिए सुकर है। तो दुनिया ने भौतिक सुख संपदा, उनको लग गया कि भौतिक सुख संपदा से बहुत कुछ होना नहीं है, वो शांति की तलाश में भारत आ रहे हैं। देखिएगा कि जो टूरिज्म का डिपार्टमेंट है, वो उनका एक रिपोर्ट आई है कि किस चीज को लेकर वो आ रहे हैं, क्या एंटरटेनमेंट को लेकर आ रहे हैं, एंटरटेनमेंट तो हमसे ज्यादा उनके पास साधन उपलब्ध है, तो वो सुख की तलाश में, शांति की तलाश में। एक हाल फिलहाल में एक रसवर्थ किट्टर की एक पुस्तक आई, तो हाउ गुड फील मेक टफ चॉइसेस, इसके लिए उन्होंने 21 प्रभावी अग्रणी विचारकों से बात की कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती क्या होंगी। तो उनके पास जो 6 निष्कर्ष आए उनमें से 5 तो सामान्य थे, पर एक मुद्दा बार बार आया, वह था नैतिकता का खत्म होना या विफल होना। दुनिया के इन विशिष्ट विचारकों मनुष्यों ने माना कि नैतिकता अय्याशी नहीं है, यह दुनिया इंसान के अस्तित्व से जुड़ा प्रश्न है। भारतीय मनीषा उपनिषद ऐसे कठिन चुनावों की स्थिति में अत्यंत प्रभावी मार्गदर्शक के रूप में काम करते। कठोपनिषद में उल्लेख है श्रेय और प्रेय इंसान के पास आते हैं, समाज और संसार के पास भी, पर श्रेयस जो सबके लिए सुखकर है, हितकर है, सही रास्ता है। प्रेयस जो इंद्रियों के लिए सुखकर है वह किसी के लिए हितकर नहीं। हम व्यक्ति या समूह या समाज देश किस रास्ते चलें यह तय करने की इससे प्रमाणिक कसौटी दूसरी नहीं। पर ये जो अभी जो टेक दुनिया है, जो खास करके सूचना प्रौद्योगिकी की दुनिया है, क्या इससे भारतीय मनीषा इस पक्ष से वाकिफ होंगे? नहीं। जाहिर सी बात है कि हम जो है हर हमेशा नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि मीडिया में, तो मैंने नैतिकता की बात करते ही मेरे मन में एक सवाल आता है कि आखिर यह कंटेंट क्यों आता है और इसके पीछे की रणनीति क्या है। एक सीईओ से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि साहब हम तो टारगेट करते हैं बच्चों को, बच्चों को कहेगा कि अगर बाय द वे आपके कोलगेट का, सॉरी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए, अगर आपके टूथपेस्ट का स्वाद चख लिया एक बच्चे ने तो अगले 25 वर्षों तक आपके वो ग्राहक बन जाएगा। तो हम लोग टारगेट करते हैं बच्चों पर, तो इसके कंटेंट में बच्चों के लिए ही इस प्रकार की सामग्री परोसी जाती है जो कि शुरू से ही बच्चा जो है उसी के लिए आदि हो जाए। ये सब हम बात नहीं बोलेंगे बॉर्नविटा का प्रचार, ये सब जो है ये सब तो सब जानते ही हैं, लेकिन कि अभी जो है हाल फिलहाल में वर्चुअल वर्ल्ड, वर्चुअल गेम के माध्यम से बच्चों को मोहपास में बांधना शुरू किया और कंपनियां जानती हैं कि आज का जमाना वर्चुअल वर्ल्ड का, कुछ वर्चुअल कन द सैंडबॉक्स, डिसेंट्रालैंड, क्रिप्टो वॉलेट्स, सोमिनियम स्पेस, अर्थ 2, निफ्टी आइलैंड, सुपर वर्ल्ड, वाइल्डर वर्ल्ड, ये जो है अब ये जान चुकी है कि अभी रिपोर्ट आई कि ये 37,000 करोड़ रुपया का जो है इसका बाजार है। जब बाजार जुड़ता है तो वहां नैतिकता का सवाल नहीं, वहां लाभ का सवाल है, शुद्ध मुनाफा का सवाल है, नेट प्रॉफिट का सवाल है। इसलिए अश्लील और अश्लील का सवाल उनके पक्ष में नहीं है, नैतिकता अनैतिकता का प्रश्न नहीं है। हमने रिसर्च के दौरान मीडिया की नैतिकता के लिए आचार संहिता पर हमने बात करना चाहिए था, तो वर्ष 2001 से लेकर 2020 तक हमने भारतीय प्रेस परिषद इंडियन प्रेस काउंसिल में 34,734 मामलों का अध्ययन किया रिसर्च में। तो ये है, तो अलग अलग है कि नैतिकता का पैमाना अलग है, प्रेस के विरुद्ध है, आचरण को लेकर है, फिर उसके पत्रकारों के उत्पीड़न को लेकर है, सिद्धांत एवं प्रेस है, मानहानि के मामले हैं, नैतिकता के संबंधी मामले हैं, सांप्रदायिकता के संबंधी मामले हैं, ऐसे जो हमने, तो हमने जो पाया कि 2001 से 20 तक जो भारतीय प्रेस परिषद में कुल दर्ज मामले 34,734 मामले में से 15,946 मामलों का ही निपटारा हुआ और बाकी का जो है विचाराधीन या केस खारिज कर दिया गया। यहां चौंकाने वाला तथ्य यह भी प्राप्त हुआ कि प्रेस द्वारा सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध कुल 4,007 मामले दर्ज हुए, जबकि पत्रकारिता की नैतिकता संबंधी उल्लंघन के 14,200। तात्पर्य पत्रकारिता के आचरण का उल्लंघन करने वाले मामले अधिक दर्ज किए गए। अब पत्रकारों के आचरण की संहिता को आचार संहिता बनाने वाली संस्था है पीसीआई, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जब पीसीआई आई तो उस समय सिर्फ समाचार पत्र थे, समाचार पत्रों के लिए उन्होंने जो नियम कायदे कानून बनाए, लेकिन उनके पास विधायी शक्तियां नहीं दी गई। अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दबदबा 1990 के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आज सोशल मीडिया का दबदबा है। तो हालांकि 2008 में आईटी एक्ट आया, 2000 में, फिर 2008 में उसका संशोधन आया, लेकिन वो भी कारगर नहीं है। आज हम देख रहे हैं साइबर फ्रॉड अलग अलग तरीके से। मैं यूनिवर्सिटी में काम करता हूं, मेरे यूनिवर्सिटी में एक दिन में 12 लोग साइबर फ्रॉड में। जल्दी ठीक है, तो मैं एक चीज कहना चाह रहा था कि मीडिया मतलब प्रेस काउंसिल की जगह पे मीडिया काउंसिल बने और उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया को भी उसमें शामिल किया जाए। और जो जैसे पीसीआई का जो चेयरपर्सन होता है उसमें किसी जज को बना दिया जाता है। जज को बनाने का मतलब ही नहीं है, जो जो जिनका पत्रकारिता से लेना देना नहीं और वो पत्रकारिता के आचरण आचार संहिता का वो पैमाना निर्धारित करेंगे। इसलिए मीडिया के जो नामचीन हस्ती है, जो न्यायिक प्रक्रिया की समझ रखता हो, उसे प्रेस परिषद या मीडिया काउंसिल के अध्यक्ष रूप में जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। तो ऐसे तो निष्कर्ष यह है कि ऐसे दुर्धर्ष चुनौतीपूर्ण समय में लेखकों, साहित्यकारों, संपादकों, संस्कृति कर्मियों की जिम्मेदारी अवश्य कुछ बढ़ जाती है। आध्यात्मिकता, नैतिकता, मानवीयता, सच्चरित्रता, इन सब की आवश्यकता आज समाज में, राष्ट्र में, विश्व में सर्वोपरि है, ताकि विश्व बंधित वैश्विक शांति की स्थापना के संप्रत्यय को बल मिल सके और इसके लिए मीडिया कर्मियों को आगे आना होगा। मैं बहुत बहुत आभारी हूं, मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया, यहाँ के आयोजकों करुणा भाई, शांतनु भाई, डॉक्टर मेधावी शुक्ला बहन जी, माधुरी दीदी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत फर्क है तेरी और मेरी तालीम में, बहुत फर्क है तेरी और मेरी तालीम में, तूने उस्तादों से सीखा है और मैंने हालातों से। बहुत बहुत आभार आप सभी का।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमित जी का, बहुत ही अनुभव युक्त वक्तव्य था, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी मैं निवेदन कर रही हूँ डॉक्टर सुजाता सिंघी जी अपना अनुभव, अपना वक्तव्य हमारे बीच में रखेंगे। आप डायरेक्टर कम्युनिकेशंस इंटरनेशनल प्रेस रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल मुंबई से, एंड शी इज ऑल्सो द वाइस चेयरपर्सन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस अंडर द ह्यूमन राइट्स काउंसिल एंड हॉनरेबल लाइफ मेंबर ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ न्यूज एंड ब्रॉडकास्टिंग, डॉक्टर सुजाता सिंघी जी। और बहुत सुंदर इन्होंने एक किताब लिखा है, हनुमान विजडम, तो इस किताब का अभी विमोचन करने जा रहे हैं। बहनों से अनुरोध है कि अभी लेके आए दीदी के सामने और सभी को एक एक दे देंगे। अभी हम डॉक्टर सुजाता जी से सुनेंगे उनका वक्तव्य और किताब के बारे में भी सुनेंगे।
नमस्कार एंड ओम शांति। इट्स इंडियन एन ऑनर टू बी हियर अमंगस्ट ऑल ऑफ यू। जैसे हम कहते हैं कि कायनात उन्हीं लोगों को मिलाती है जिनके ऊर्जा एक जैसी होती है, और इसी तरह हम अब सब मिले हैं यहाँ पे क्योंकि हम सब वही सोच के साथ यहाँ आए हैं कि हम क्या दे सकते हैं, हमारे अंदर क्या वो ऊर्जा है जो हम दे सकते हैं। एंड एज द लास्ट स्पीकर इट्स क्वाइट डिफिकल्ट एट टाइम्स बिकॉज हर किसी ने बात की है इसी के बारे में, हमारा टॉपिक वही है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि कुछ नया लेके आऊँ, कुछ नया सोच, मे बी एक अलग दृष्टिकोण, ताकि हम एक नया समाज का निर्माण कर सके। वो समाज जो हमारा था, हमें कुछ नया नहीं करना है, हमें सिर्फ उसको उजागृत करना है। और इसी सोच के कारण मैंने ये किताब लिखी थी, हनुमान विजडम। आई एम एन इंटरनेशनल स्पीकर जो वैदिक विजडम पूरे वर्ल्ड में सिखाती हूँ एज अ साउंड एंड स्पिरिचुअल साइंटिस्ट एंड एज अ वर्ल्ड पीस एम्बेसडर। मेरा काम होता है ये दिखाना कि हम जो करते हैं उसके पीछे एक साइंस है। सो यस, आई एम अ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट हु लर्न्स टीचर्स अबाउट व्हाट वी ट्रूली आर, व्हाट वी कैन डू बियॉन्ड एंड हाउ वी बिहेव ऑन अ रेगुलर बेसिस। एंड यस, जैसे मेरे इंट्रोडक्शन में बताया गया, एज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, सबसे पहली चीज हमारे में आती है मीडिया। मीडिया बना सकता है, मीडिया तोड़ भी सकता है। आप सब जानते हैं ये चीज, आई नो बिकॉज ऑल ऑफ अस आर फ्रॉम द मीडिया। और हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा दृष्टिकोण क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे इंटेंशंस क्या है, क्या हम जोड़ना चाहते हैं कि हम तोड़ना चाहते हैं, क्या हम वो पानी बनना चाहते हैं जो घी का काम नहीं करेगा आग में, या घी डालना चाहते हैं ताकि और आग भड़के। रिमेंबर वन थिंग विच आई ऑलवेज थिंक अबाउट एज अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, दैट द लॉ ऑफ कर्म इज यूनिवर्सल। पावर ऑफ वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक शब्द में एक ऐसी ऊर्जा है जो जोड़ सकता है या तोड़ सकता है। और मीडिया पीपल के पास, आप सबके पास वो ताज है, रत्न जड़ित ताज, जिसके अंदर अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो दो हाथ है। अगर हम अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगे तो वी विल डेफिनेटली बी एबल टू बी दैट पर्सन। एक इंडिविजुअल भी अगर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी से काम करेंगे तो वी विल बिकम दैट वर्ल्ड विच वी वॉन्ट टू सी, वो स्वर्ण भारत हम फिर दिखाएंगे दुनिया को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सब अन्नमय कोशा में पड़े हुए हैं। हम बस ये देखते हैं कि मेरे प्लेट में खाना आ रहा है, मेरे कपड़े की व्यवस्था हो रही है, मेरे परिवार खुश है, बच्चों की पढ़ाई हो रही है, पड़ोसी से मेरे पास ज्यादा धन है तो मैं खुश हूं। अन्नमय कोशा से आगे बढ़िए, सिर्फ प्राणमय तक नहीं, मनोमय तक पहुंचना है। मनोमय इज वेर योर इंटेंशन स्टार्ट। मनोमय कोशा से आपके अंदर वो इंटेंशन जागृत होंगे कि वासुधैव कुटुंबकम। अक्सर मैंने लोगों को सुना है वासुदेव कुटुंबकम, नहीं, वो तो है वासुधैव कुटुंबकम। धैव यानी धरती, भूमि, पूरी धरती एक कुटुंब। और अगर हम इस विचार से मनोमय कोश से काम करेंगे तो डेफिनेटली विज्ञानमय कोश, आपकी सोचने की शक्ति, आपका इंटेलेक्ट विल टेक यू टू द राइट पाथ। और वो इंटेलेक्ट विल बी गाइडिंग यू टू द हाइएस्ट रोल दैट यू प्ले एज मीडिया पीपल। और वहां से लॉ ऑफ कर्म, आप जो लिख रहे हो, आपके जो कंज्यूमर्स हैं, अपने रीडर्स जो है, हम जो लिखते हैं, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, वो सिर्फ बाहर के लोग नहीं है, हमारे परिवार वाले भी तो सुन रहे हैं, हमारे परिवार वाले भी तो देख रहे हैं। एंड जो इफेक्ट दुनिया में हो रहा है वो भी अपने घरों में होना शुरू हो जाता है, अपना सोशल स्ट्रक्चर बिगड़ने लगता है। वो जमाना था जब माँ बाप को हम भगवान की तरह पूछते थे, सुबह उठते ही उनके चरणों से हम ब्लेसिंग्स लिया करते, उनके आशीर्वाद लिया करते थे। आज वही भारत है जहां पे बच्चे वृद्धाश्रम के एड्रेस ढूंढते हैं। क्या ऐसी भारत की हमें आशा है? क्या ऐसा हमारा दृष्टिकोण है? और जब मीडिया के पास वो ताज है, रत्न जड़ित ताज, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के साथ हम संचालित कर सकते हैं, तो क्यों ना इस ऊर्जा को आगे बढ़ाए सकारात्मक सोच के साथ। एज जर्नलिस्ट, ईच पर्सन इज अ वॉरियर हु होल्ड्स द पेन विद ऑल द माइट। यही सब लेखन है जिससे हमें आजादी मिली थी। वो आजादी फिजिकल आजादी थी, आज हमें मेंटल आजादी चाहिए है। सब लोग झगड़े हुए हैं, एकजुट में जुटे हुए हैं। सोशल मीडिया में क्या हुआ है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए लोगों को। जैसे हमारे एक वक्ता ने कहा था कि पेशेंस की कमी हो रही है, दिस इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। क्या बच्चा एक दिन में पैदा होता है? वो नौ महीने ही है। बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव फॉरगॉटन द लॉज ऑफ नेचर। वी हैव टू ब्रिंग बैक दैट लॉ ऑफ नेचर, अंडरस्टैंड द यूनिवर्सलिटी ऑफ द लॉ ऑफ कर्म। जो आप लिखोगे उसका ऑडिट लीजिए, क्या मैं लिख रहा हूं, इज इट फॉर द हाइएस्ट गुड। ईच जर्नलिस्ट, ईच मीडिया पर्सन इज अ विजनरी टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर इंडिया। यू ऑल आर दोज किंग्स ऑफ वर्ड्स विच बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर वर्ल्ड, अ वर्ल्ड ऑफ पीस, हार्मनी, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। अन्नमय कोशा से आगे उठ के हमें आगे बढ़ते बढ़ते विज्ञानमय कोशा से भी आगे बढ़ के आनंदमय कोशे तक पहुंचना है। And Anandamaya Kosha is the place where you will feel that you truly are wearing the right crown on your head. Har ek jada hua heera, moti, diamonds, jo bhi hai, chamakne lagega, kyunki aapne apna kaam sahi kiya hai. And law of karma will come back to you. Jaise Gandhi ji ne kaha tha, be the change you want to see. Aur aapke har ek likhit shabd ko aise banna chahiye, jaise ki andar padhne wale ke andar urja jagrut hoye ki mujhe bhi kuch karna hai, kuch acha karna hai. So, I think on this note, ek short prayer mein gana chahti hu, which will take just around 30 seconds.
ये मत कहो खुदा से ये मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से ये मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है. ओम शांति.
बहुत खूब डॉक्टर सुजाता जी, सचमुच मेरा खुदा बड़ा है, लेकिन उस खुदा के साथ हमारा संबंध, हमारा कनेक्शन बरकरार रखे तो जरूर हमें ये लगेगा. समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस हमारे जिंदगी में आ रहे हैं, वो बहुत छोटा है, क्योंकि मेरे साथ मेरा खुदा है, मेरा साथी है. अभी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, इस कार्यक्रम के अंतिम चरण के ओर अभी मैं अनुरोध करने जा रही हूँ आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी प्रभा देवी जी से. आप अपना आशीर्वचन हमारे समक्ष रखेंगे. आप ज्ञान सरोवर कैंपस के डायरेक्टर हैं और भरूच सब जोन के आप इंचार्ज भी हैं. पिछले 60 सालों से आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़ करके समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इस संस्था के जो फाउंडर पिताश्री ब्रह्मा बाबा के आप पालना में पले, दादी प्रकाशमणि जी जो इस संस्था के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहे, और दादी जानकी जी जो उसके उनके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहे, उनके पालना और डायरेक्शन में आप पलते रहे, आगे बढ़ते रहे हैं. और पिछले साल जब हमारे आदरणीय राजयोगिनी निर्मला दीदी जी अव्यक्त हुए, उसके बाद आप यहाँ ज्ञान सरोवर के डायरेक्टर का कार्यभार आपने संभाला है. तो ऐसे त्यागी तपस्वी आत्मा से अभी हम सुनेंगे आदरणीय ब्रह्म कुमारी प्रभा दीदी जी.
ओम शांति, ओम शांति. सभी प्यार से बोलिए ओम शांति. सम्माननीय मंच और विशेष मीडिया कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी मीडिया वालों को विशेष, आज हम सभी सुन रहे थे कि मूल्यनिष्ठ समाज बनाने के लिए उसकी दृष्टि और उद्देश्य क्या है, जिसके लिए हम मूल्य जीवन का एक श्रृंगार है. ये कहेंगे कि मूल्य एक जीवन के लिए गहना है. जितना जीवन के अंदर मूल्य होता है, उतना ही जीवन हमारा बहुत वैल्यूबल बनता है. और जितना हमारा जीवन वैल्यूबल होगा, तो जीवन के वैल्यूबल बनने से समाज भी वैल्यूबल बन जाता है. आज सभी समाज को सुधारने के लिए या समाज को मूल्यवान बनाने के लिए बातें करते हैं कि भाई समाज मूल्यवान बनना चाहिए. लेकिन समाज जो बना है वो किसके द्वारा बना है? समाज जो बना है वो हमारे द्वारा ही बना है. अगर एक एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर उन वैल्यूज को या मूल्यों को धारण कर ले, तो जब व्यक्ति के जीवन से ही समाज बनेगा, जैसे कहते हैं एक अगरबत्ती होती है और उसको जलाते हैं तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है, तो वैसे ही हम अगर एक व्यक्ति अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प करते हैं तो उस संकल्प से हम समाज को भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। समाज के लिए तो सोचते हैं लेकिन स्वयं के लिए कभी भी नहीं सोचते हैं। तो विशेष परमपिता परमात्मा जो हम सभी आत्माओं के पिता हैं, वो हम सभी को विशेष यही शिक्षा देते हैं कि आप सभी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, और जब स्वयं का जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा तो ऑटोमेटिक समाज तो श्रेष्ठ बनेगा ही। समाज को श्रेष्ठ बनाने से पहले हमको स्वयं के ऊपर विशेष अटेंशन देना है, और जब स्वयं के ऊपर विशेष अटेंशन देंगे तभी हम समाज को भी श्रेष्ठ बना सकेंगे। समाज को श्रेष्ठ बनाने के अनेक प्रयत्न हरेक करते हैं, उसके लिए कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, लेकिन स्वयं को कैसे श्रेष्ठ बनाया जाए उसके लिए कभी भी सोचते नहीं हैं। तो विशेष परमपिता परमात्मा ने हम सभी को एक ही नारा दिया है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जब तक स्व का परिवर्तन नहीं है तब तक विश्व का परिवर्तन नहीं हो सकता है, तो स्व परिवर्तन हमें करना है। जब स्व का परिवर्तन होगा तब परिवार का परिवर्तन होगा, और परिवार से फिर समाज का और देश का परिवर्तन होगा। तो इसीलिए हमें विशेष स्व परिवर्तन के ऊपर विशेष अटेंशन देना है। स्व के जीवन के अंदर हमें वैल्यूज लानी है। जो वैल्यूज हमारे जीवन से खत्म हो चुकी हैं, उन वैल्यूज को अगर हम अपने जीवन में धारण करते जाएंगे तो हमारा जीवन बहुत सुंदर और वैल्यूबुल बनता जाएगा। तो विशेष मेरा यही आप सभी से अनुरोध है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का लक्ष्य लेकर के यहाँ से विशेष आप सभी यहाँ से जाएंगे। ओम शांति।
बहुत संक्षिप्त रूप में दीदी ने पावरफुल डोज दिया है, टैबलेट दिया है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। इस ये प्रॉमिस, ये प्रतिज्ञा अपने आप से जरूर यहाँ से करके जाएंगे, क्योंकि तीन दिन जो यहाँ बैठ करके आप सुन रहे हैं, जरूर आपके अंदर वो आध्यात्मिक या सकारात्मक ऊर्जा जरूर अपने अंदर आया होगा। तो अपने आत्मा का 100% बैटरी चार्ज करके यहाँ से जाएंगे तो जरूर आप परिवर्तन अपने अंदर भी लाएंगे और समाज में भी लाने की कोशिश करेंगे। अभी मैं प्रभा दीदी से निवेदन करती हूँ मच्चा सेन अपने मेहमानों का अभिनंदन सौगात देकर के करेंगे। हर एक का वक्तव्य बहुत ही सुंदर, बहुत ही अनुभवी था, तो सभी के लिए हम करतल ध्वनि से हम अपना धन्यवाद प्रकट करेंगे।